आगे सबक देखिए भाई। قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها। गुज़श्ता सबक में हमने खियारे इत्क का मसला पढ़ा था। इंदल अहनाफ जब भी किसी मनकूहा बांदी को आका आजाद करेगा उसको खियारे इत्क मिलेगा। वजह यह कि यहां पर बांदी की दो तलाकें होती हैं और आजाद औरत की तीन तलाकें। तो जब बांदी थी तो इसका खावन दो तलाकों का मालिक था और जब आजाद होगी तो वो तीन तलाकों का मालिक बन जाएगा। तो बांदी के ऊपर चूंकि खावंद की मिल्कियत बढ़ रही है तो शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है कि वो इसको दफा कर सकती है, यानी निकाह को फसख कर सकती है जिस मजलिस में उसको आजादी का पता चले। तो हमारे नजदीक हर मनकूहा बांदी को आजादी पर खियारे इत्क मिलता है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह फरमाते हैं कि अगर मनकूहा बांदी का खावंद गुलाम हो फिर उसको खियारे इत्क मिलेगा और उनकी नजदीक इल्लत जो है वो अदम कफाअत है। हमारे नजदीक इल्लत क्या है? इज़्दियाद मिल्क, के खावंद की मिल्कियत उस पर बढ़ रही है, और उनके नजदीक अदम कफाअत है कि बांदी आजाद हो गई और उसका खावंद गुलाम है तो खावंद इसका कुफ ना रहा, इसका हम पल्ला और बराबर का ना रहा तो शरीयत उसको इख्तियार देती है। लेकिन अगर बांदी का खावंद आजाद हो तो फिर वो फरमाते हैं कि इस सूरत में बांदी को खियारे इत्क नहीं मिलेगा। तो हमारे नजदीक जो है हर बांदी को मुतलकन खियारे इत्क मिलेगा अगर वो मनकूहा है आजादी के वक्त भाई। और दलील हमारी जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इख्तियार दिया था और आपने फरमाया था मलकती बुजा की फख्तारी, कि तू अपने बुजा की मालिक हो गई है, फख्तारी, बस तू इख्तियार कर ले, यानी चाहे अपनी जात को और चाहे अपने खावंद को इख्तियार कर ले। तो ये हदीस भी हमारी दलील है और नीस हमारे नजदीक इल्लत मिल्कियत का बढ़ना है और वो पाई जा रही है, लिहाजा बांदी को खियारे इत्क होगा। और नीस इसी तरह मुकातबा भी है, हमारे नजदीक मुकातबा जो है उसको भी खियारे इत्क मिलेगा, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुकातबा जो है उसकी तो मर्जी के बगैर आका निकाह नहीं करवा सकता, और नीस जो महर मिलता है वो भी मुकातबा ही का हक होता है, उसी को मिलता है। तो जब निकाह मुकातबा की मर्जी से हुआ है और महर भी इसने वसूल किया है तो इस मुकातबा को कोई इख्तियार इत्क नहीं होगा, क्योंकि इसको इख्तियार देने की कोई वजह और कोई सबब नहीं है, जब क्योंकि निकाह इसकी मर्जी से हुआ है। जबकि हमारे नजदीक जो है कि इल्लत जो है मिल्कियत का बढ़ना है और वो मुकातबा में भी पाई जा रही है, इसलिए क्योंकि मुकातबा की इद्दत भी दो हैज हैं और उसकी तलाकें भी दो हैं, तो जब वो आजाद होगी तो ये तलाकें बढ़ेंगी, लिहाजा इसलिए उसको इख्तियार मिलेगा भाई। उसके बाद साहिब हिदायत ने दूसरा मसला जिक्र फरमाया था कि अगर एक बांदी ने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया है तो ये निकाह आका की इजाजत पर मौकूफ है, लेकिन उससे पहले ही आका ने इसको आजाद कर दिया, तो अब ये जो निकाह था ये मौकूफ था आका के हक की वजह से, और जब आका ने आजाद कर दिया तो आका ने अपना हक साकित कर दिया, और तो लिहाजा आजाद होते ही ये निकाह जो है नाफिस हो जाएगा क्योंकि मानिया चला गया। मानिया क्या था? आका का हक। तो आजाद होते ही आका का हक साकित हुआ, मानिया खत्म हुआ, तो निकाह नाफिस हुआ, और ये निकाह चूंकि आजादी के अंदर नाफिस हो रहा है तो इब्तिदा से ही खावंद को तीन तलाकों का हक मिल रहा है, लिहाजा ये निकाह सही हो जाएगा और ये जो औरत है इसको खियारे इत्क नहीं मिलेगा, क्योंकि निकाह नाफिज हुआ ही कितनी तलाकों के साथ है? तीन तलाकों के साथ। ऐसा नहीं कि पहले दो तलाकें थीं और अब बढ़कर तीन हो रही हैं भाई। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि एक बांदी है वो अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लेती है और फिर उसके बाद खावन उससे सोहबत करता है और फिर आका उसको आजाद करता है। तो एक सूरत यह है कि खावन की सोहबत के बाद आका ने इसको आजाद किया है। तो इस सूरत में याद रखो यह सारा महर जो है यह आका को मिलेगा, क्योंकि आजादी से पहले बांदी के मनाफिया का मालिक आका था। तो खावन ने आका के हक में तसर्रुफ किया है, लिहाजा अब महर भी किसको देना पड़ेगा? आका ही को देगा वो। जबकि अगर बांदी ने निकाह तो बगैर इजाजत के कर लिया लेकिन खावन के सोहबत करने से पहले ही आका ने इसको आजाद कर दिया, तो आजादी के बाद खावंद ने इसके साथ सोहबत की है, तो इस सूरत के अंदर तो बांदी के मनाफिया का मालिक आका नहीं है, लिहाजा इस सूरत में सारा महर बांदी का हक होगा। यहां पर फिर इश्काल होता था कि बांदी का महर मिसल मसलन 100 दिरहम है और उसने निकाह जो किया था वो 1000 दिरहम पर किया है, तो आका को तो सिर्फ 100 दिरहम मिलने चाहिए क्योंकि बांदी के मुनाफे की कीमत कितनी है? 100 दिरहम। तो आका को उसके हक के बकदर मिलना चाहिए, लेकिन साहिब हिदाया फरमाते हैं कि नहीं, सारा महरे मुसम्मा जो है वो आका को मिलेगा। वजह यह कि यहां पर जब आजादी के बाद निकाह नाफिज होगा तो यह कोई अलग निकाह नाफिज नहीं हो रहा, यह वही निकाह है, इसके नाफिज होने की निस्बत माजी की तरफ की जाएगी। किसकी तरफ? माजी की तरफ, कि जिस वक्त निकाह किया था उसी वक्त से नाफिज हो गया है भाई, और उस वक्त तो 1000 दिरहम महर जिक्र किया था यानी महरे मुसम्मा था, और आका जब बांदी का निकाह करवाए तो जितना भी महरे मुसम्मा होता है वो आका का हक होता है, लिहाजा इस सूरत में भी महरे मुसम्मा आया है तो वो सारा आका का हक होगा। बात समझ में आ गई? यहां ऐसा नहीं है कि वहां वो जो आकद किया था उसमें और महर था और बाद में जब नाफिस हुआ तो और महर है, नहीं, एक ही आकद है और एक ही महर है, तो वो सारा महर ही आका का हक होगा अगर खावन ने आजादी से पहले सोहबत कर ली पाई। उसके बाद फिर अगला मसला साहिबे हिदाया ने यह जिक्र फरमाया था कि अगर बाप अपने बेटे की बांदी के साथ सोहबत कर ले और फिर इस बांदी से औलाद पैदा हुई और बाप ने दावा कर दिया कि ये मेरी औलाद है, तो इंदल अहनाफ ये बांदी बाप की उम्मे वलद बन जाएगी और इस बेटे का बाप से नसब साबित हो जाएगा, और ये बांदी तो बेटे की थी लेकिन अब बाप इसका मालिक बन गया है तो बाप को इस बांदी की कीमत अदा करना पड़ेगी, वो बेटे को इसकी कीमत अदा करेगा। वजह यह कि हमारे नजदीक जो है जब बाप बेटे की बांदी से सोहबत करने लगा है और फिर आगे ये उम्मे वलद बनेगी, उम्मे वलद तो वही बांदी बन सकती है जिसके अंदर किसी शख्स की हकीकतन मिल्कियत हो या उस बांदी के अंदर उसका हक मिल्क हो, हकीकतन उस शख्स की मिल्कियत हो उस बांदी में, यानी हकीकतन उस पूरी बांदी का मालिक हो, फिर उम्मे वलद बन सकती है, या उस बांदी के अंदर उसका हक मिल्क हो। जैसे मुकातबा, मैंने आपको बतलाया था कि आका जब अपनी बांदी को मुकातबा बना देता है तो वो बांदी आजाद लोगों के हुक्म में हो गई, अब आका इससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, वो अपनी मर्जी से खिदमत करती है तो वो अलग बात है लेकिन आका उससे खिदमत जबरन नहीं ले सकता, और नीज आका इस बांदी के साथ सोहबत भी नहीं कर सकता, और आका अगर इसका निकाह करवाएगा तो उसमें भी इस मुकातबा की इजाजत जरूरी है, उसकी मर्जी के बगैर आका उसका निकाह भी नहीं करवा सकता। तो ये जो मुकातबा है ये आजाद औरतों की तरह हो गई, यानी इसके अंदर आका की हकीकतन मिल्कियत बाकी नहीं रही लेकिन इसके अंदर हक मिल्क है आका के लिए, इसलिए क्योंकि ये बांदी अगर आजीज आ गई, बदले किताबत अदा न कर सकी तो फिर ये आम बांदियों की तरह बन जाएगी और फिर आका की इसके अंदर पूरी मिल्कियत वापस आ जाएगी। तो मुकातबा के अंदर आका की हकीकतन मिल्कियत तो नहीं है लेकिन हक मिल्कियत है भाई, यानी बाद एतबार से आका अब भी इसका मालिक है क्योंकि अगर ये आजिज आ गई तो फिर ये पहले जैसी बांदी बन जाएगी, आका फिर इसका हकीकतन मालिक बन जाएगा। मालूम हो अभी भी मुकातबा के अंदर आका का हक मिल्कियत है भाई। तो किसी बांदी को भी उम्मे वलद बनाने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर हकीकतन मिल्कियत हो या हक मिल्कियत हो। भाई तो यहां जब बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर रहा है, उसको अपनी उम्मे वलद बना रहा है, और उम्मे वलद के अंदर तो शर्त है कि या तो हकीकत मिल्क होनी चाहिए या हक मिल्कियत होनी चाहिए, तो इस मजबूरी की वजह से कि इसके बगैर तो बाप इसको उम्मे वलद बना ही नहीं सकता, तो इंदल अहनाफ यहां बाप के लिए पहले मिल्कियत साबित कर दी जाएगी। क्योंकि एक सहाबी से हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था, अंता व मालू का लि अबी का, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। भाई तो लिहाजा मालूम हुआ बाप के लिए बेटे के माल में हक तमल्लुक है, वो उसके अंदर मालिक बन सकता है बेटे के माल का। तो लिहाजा यहां पर भी हाजत और जरूरत की वजह से, ताकि बाप का मां जो है वो महफूज हो जाए, बाप का मां क्या हो जाए, महफूज हो जाए, यानी बच्चे का आगे नसब साबित हो सके, इसके लिए जरूरी है कि पहले बाप के लिए मिल्कियत साबित की जाए। क्योंकि अगर मिल्कियत नहीं होगी तो फिर ये उसकी उम्मे वलद भी नहीं बन सकती। तो लिहाजा बाप के लिए पहले मिल्कियत साबित की जाएगी। तो फिर बाप जब सोहबत कर रहा है तो अब अपनी बांदी से सोहबत कर रहा है, लिहाजा ये फेल भी उसका हराम ना रहा। और नीज जब इस बांदी से औलाद होगी और बाप दावा कर देगा तो ये अपनी बांदी की औलाद का दावा कर रहा है, लिहाजा नसब भी साबित हो जाएगा। तो चूंकि बाप ने यहां पर अपनी बांदी से सोहबत की है, लिहाजा बाप पर महर भी वाजिब नहीं होगा। हां, सिर्फ कीमत उसको देना पड़ेगी। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर बाप पर महर भी वाजिब होगा। दरअसल वो मिल्कियत को इस्तीलाद का हुक्म करार देते हैं। हमने तो मिल्कियत को इस्तीलाद के लिए शर्त करार दिया था कि कोई शख्स बांदी को उम्मे वलद तभी बना सकता है जब उसके अंदर उसकी मिल्कियत हो या हक मिल्क हो। तो पहले मिल्कियत का होना जरूरी है। जबकि वो इस मिल्कियत को इस्तीलाद का हुक्म करार देते हैं और हुक्म शह शह के बाद हुआ करता है। जैसे मुश्तरी बैअ करेगा तो फिर मबीअ का मालिक बनेगा, जैसे एक मर्द और औरत निकाह करेंगे तो फिर वो एक मियां बीवी बनेंगे। तो हुक्म शह शह के बाद हुआ करता है। तो उनके नजदीक इस्तीलाद के बाद मिल्कियत साबित होगी। लिहाजा अभी जब बाप सोहबत कर रहा है अभी मिल्कियत साबित नहीं। जब मिल्कियत साबित नहीं तो बाप ने बेटे की बांदी से सोहबत की है और यह मुनाफे का मालिक तो बेटा था, बाप ने वसूल कर लिए, लिहाजा बाप को उकर देना पड़ेगा। बाप को उकर देना पड़ेगा, पूरा उकर। जबकि हमारे नजदीक उकर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बाप उससे पहले ही मालिक बन चुका है, वो अपनी बांदी के साथ सोहबत कर रहा है। और मैंने बताया था उकर ये भी महर को कहते हैं, लेकिन ये उस वक्त महर को उकर कहते हैं जब वती शुबे की वजह से कर ली जाए। तो जो माल वाती पर लाजिम होता है उसको महर नहीं कहते क्योंकि वहां निकाह नहीं है। महर का लफ्ज तो निकाह के अंदर इस्तेमाल होता है और यहां तो कोई निकाह नहीं, शुबे की वजह से वती की गई है तो इसको फिर उकर कहते हैं। और मैंने आपको बतलाया था कि आजाद औरत के अंदर उकर जो है वो उसका महरे मिसल होता है, जबकि बांदी के अंदर यह देखा जाएगा कि आका इस जैसी हुस्नो जमाल वाली बांदी का निकाह कितने महर में करवाएगा। अगर इस जैसे हुस्नो जमाल वाली बांदी किसी आका की हो तो वो अमूमन कितने में उसका निकाह करवाते हैं, तो वो जो महर होगा वो ही यहां पर उकर हो जाएगा। तो इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि बाप को कीमत के साथ साथ उकर भी देना पड़ेगा। वो इसको कयास करते हैं मुश्तरका बांदी पर। बाप और बेटा मिलकर एक बांदी खरीद लेते हैं, कुछ पैसे बाप ने मिलाए और कुछ पैसे बेटे ने मिलाए। तो अब ये जो मुश्तरका बांदी है इनमें इसके अंदर दोनों की मिल्कियत है और दोनों में से किसी एक के लिए भी इसके साथ सोहबत करना जायज नहीं। लेकिन बहरहाल दोनों की मिल्कियत तो है, बाप के लिए वती तो हराम थी लेकिन उसने फिर भी इस बांदी के साथ सोहबत कर ली और फिर इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बाप ने दावा कर दिया कि ये मेरा बेटा है। तो याद रखो इस सूरत में ये बांदी इस बाप की उम्मे वलद बन जाएगी और इस बच्चे का नसब भी साबित हो जाएगा। इसलिए क्योंकि नसब साबित करने के लिए क्या जरूरी था कि बांदी के अंदर हकीकत मिल्क हो या हक मिल्क हो। भाई और बाप भी इस बांदी के अंदर मिल्कियत रखता है, निसब बांदी का वो मालिक है। तो जब मिल्कियत मौजूद है लिहाजा बच्चे का नसब साबित हो जाएगा और इस सूरत में बिल इत्तेफाक बाप को निस्फ उकर देना पड़ेगा बेटे को। वजह यह कि निस्फ बांदी तो बाप की अपनी है भाई और निसफ बेटे की है तो बेटे को निस्फ उकर अदा करेगा। तो इमाम शाफई और इमाम जुफर रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि ए अहनाफ देखो मुश्तरका बांदी के अंदर जब बेटा निसफ बांदी का मालिक था तो आपने कहा निस्फ उकर उसको देना पड़ेगा और जब इस बांदी के अंदर पूरी बांदी ही बेटे की है तो इसके अंदर फिर पूरा उकर बाप को देना पड़ेगा भाई। तो हम कहते हैं कि नहीं, आप ये जो बेटे की बांदी थी इसको मुश्तरका बांदी पर कयास नहीं कर सकते भाई। वजह यह कि मुश्तरका बांदी के अंदर बाप की मिल्कियत पहले से मौजूद है लिहाजा वहां सोहबत से पहले अलग कोई और मिल्कियत साबित करने की जरूरत नहीं। बाप आदि का तो पहले से ही मालिक है, जब आदि का मालिक है तो वो काफी है, उसके जरिए इस्तीलाद हो सकता है, वो उम्मे वलद बन सकती है क्योंकि मिल्कियत चाहिए थी और मिल्कियत मौजूद है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी सूरत में जब पूरी बांदी ही बेटे की है और बाप उससे सोहबत करता है तो इस सूरत के अंदर तो इस बेटे की बांदी के अंदर ना बाप हकीकतन मालिक है ना उसका हक मिल्कियत है, लिहाजा यहां इस्तीलाद हो ही नहीं सकता जब तक मिल्कियत को साबित न किया जाए। मुश्तरका बांदी में इस्तीलाद हो सकता है क्योंकि वहां निसफ का मालिक बाप है, लेकिन यहां इस्तीलाद नहीं हो सकता, इसलिए हमें पहले मिल्कियत को साबित मानना पड़ेगा फिर ही इस्तीलाद मुमकिन हो सकेगा। तो हमारे नजदीक इस्तीलाद के लिए मिल्कियत शर्त है, पहले मिल्कियत हो फिर ही इस्तीलाद हो सकता है। इस्तीलाद का क्या माना मैंने बतलाया था, इस्तीलाद का माना है उम्मे वलद बनाना। इस्तीलाद का क्या माना है, उम्मे वलद बनाना। तो हमारे नजदीक मिल्कियत होगी तो इस्तीलाद हो सकेगा यानी उम्मे वलद बना सकेगा, और मिल्कियत नहीं तो इस्तीलाद भी नहीं हो सकता। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मिल्कियत जो है वो इस्तीलाद का हुक्म है भाई, तो वो मिल्कियत इस्तीलाद के बाद साबित करते हैं, इस्तीलाद के बाद जो है बाप उस बांदी का मालिक बनेगा और फिर उसको कीमत भी पूरी देनी पड़ेगी। तो हमारे नजदीक बाप को सिर्फ कीमत देना पड़ेगी और उनके नजदीक उकर भी देना पड़ेगा और कीमत भी देना पड़ेगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर बेटा अपनी बांदी का बाप से निकाह करवा देता है तो यह निकाह जायज है, यह निकाह जायज है। याद रखो मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि मिलके निकाह और मिलके रकबी जमा नहीं हो सकते। एक औरत के अंदर एक शख्स को मिलके रकबी हासिल है यानी वो उसकी बांदी है और अब वो उसके साथ निकाह करना चाहता है तो याद रखो ये जायज नहीं, इसलिए क्योंकि मिलके रकबी आला है, उसमें पूरी बांदी की जात का मालिक है आका, जबकि मिलके निकाह अदना है, उसमें सिर्फ खावन मुनाफा का मालिक होता है। तो जब एक शख्स के लिए आला मिल्कियत पहले से साबित है तो उसके साथ अदना मिल्कियत बाकी नहीं रह सकती भाई, लिहाजा वो बांदी जिसके अंदर आका के लिए हकीकतन मिल्कियत हो या हक मिल्कियत हो उसके साथ वो निकाह नहीं कर सकता। लिहाजा अपनी बांदी के साथ आका के लिए निकाह जायज नहीं, इसी तरह अपनी मुकातबा के साथ भी उसके लिए निकाह जायज नहीं, क्योंकि बांदी के अंदर उसकी हकीकत मिल्क है और मुकातबा के अंदर आका के लिए हक मिल्कियत है भाई। तो हमारे नजदीक बेटा अपनी बांदी का निकाह बाप से करवाता है तो इस बेटे की बांदी में न बाप की हकीकतन मिल्कियत है और न हक मिल्कियत है, लिहाजा बेटे की इस बांदी से बाप का निकाह जायज है। और जब बाप का निकाह जायज है तो फिर इससे जो औलाद पैदा होगी वो बाप की शुमार होगी, उसका नसब साबित हो जाएगा। जब उसका नसब इसी तरह निकाह की वजह से साबित हो रहा है लिहाजा यहां इस मिल्कियत साबित करने की कोई हाजत नहीं है क्योंकि वैसे ही बच्चे का नसब साबित हो रहा है। और फिर बतलाया कि यह बच्चा भी आजाद होगा, इसलिए क्योंकि मनकूहा बांदी से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आका के ममलूक होते हैं, तो यह बच्चा भी अपने भाई का ममलूक हुआ। और हदीस में आता है मन मलका जारह में महरमी मिन हो अतका अलैही, कि जो शख्स भी अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना तो वह उस पर आजाद हो जाएगा, लिहाजा यह बच्चा खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बाप का निकाह अपने बेटे की बांदी से जायज नहीं। वो फरमाते हैं इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंता व मालुका ली अबी का, बेटे से क्या कहा अंता व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं। मालूम हुआ बेटे के माल में बाप का हक मिल्क है, क्या है, बाज एतबार से बाप ही उसका मालिक है, लिहाजा जब हक मिल्क है तो वहां निकाह नहीं हो सकता बाप का। जबकि हमारे नजदीक बेटे के माल में बाप के लिए हक मिल्क नहीं है बल्कि हक तमल्लुक है, यानी जरूरत और हाजत की वजह से बाप मालिक बन सकता है, मालिक बन सकता है, तो उसके लिए हक तमल्लुक है, हक मिल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाज एतबार से बाप उसका मालिक हो भाई। तो जब हक मिल्क नहीं है तो हमारे नजदीक ये बाप का निकाह बेटे की बांदी से जायज होगा, जबकि उनके नजदीक ये जायज नहीं है भाई। अब आइए आज के सबक पर। قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح। सूरत मसला ये कि एक आजाद औरत ने एक गुलाम से निकाह किया हुआ है और फिर ये आजाद औरत ये उस गुलाम के आका से कहती है कि أعتقه عني بألف कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो 1000 दिरहम के बदले में, इस गुलाम को मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले में आजाद कर दो। तो आका ने ऐसा ही किया, यानी उसने गुलाम को आजाद कर दिया। तो याद रखो इस सूरत में औरत पर अब 1000 दिरहम लाजिम हो गए और नीज ये निकाह फासिद हो गया, ये जो इस औरत का इस गुलाम के साथ निकाह था वो फासिद हो गया। वजह इसकी यह है, हमारे फुकहा फरमाते हैं कि आकिल बालिग आदमी के कलाम को जिस कदर मुमकिन हो सके उसकी तसहीह की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह उसको सही रखा जाए, उसको खराबी और गलती से बचाया जाए। तो यहां पर भी जब उस औरत ने अपने खावंद के आका से कहा आतिकहु अन्नी बी अल्फिन कि इस गुलाम को मेरी तरफ से 1000 के बदले आजाद कर दो, अब बजाहिर देखा जाए तो यह बात महाल है, इसलिए क्योंकि गुलाम तो आका का है तो वो औरत की तरफ से कैसे आजाद हो सकता है। लेकिन इस औरत के कलाम को सही किया जाएगा बाकी लिहाज के यहां इक्तेजान बै को माना जाएगा, बै और तौकील। औरत ने लफ्ज क्या कहे हैं, इस गुलाम को मेरी तरफ से 1000 के बदले आजाद कर दो, लेकिन गोया यूं समझो कि औरत ने यूं कहा कि ये गुलाम मुझे 1000 दिरहम में बेच दो और फिर मेरी तरफ से वकील बनकर इस मेरे ममलू का गुलाम को आजाद कर दो, कि ये गुलाम मुझे 1000 में बेच दो और फिर मेरी तरफ से वकील बनकर इस गुलाम को आजाद कर दो। तो यहां पर देखो इक्तिजान बै को मानना पड़ेगा, इस औरत का कलाम तभी सही हो सकता है जब इससे पहले इक्तिजान बै को माना जाए, और यहां बै का मानना मुमकिन है, लिहाजा यहां हम इक्तिजान बै को साबित करेंगे और फिर उसके बाद तौकील आ जाएगी कि वो आका उसकी तरफ से वकील बनकर उस गुलाम को आजाद कर देगा। और जब इक्तिजान बै को मानना तो बीवी अपने खावंद की मालिक बन गई, जैसे ही बै होती है मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, तो बीवी अपने खावंद की मालिक बन गई। और आपको मैंने बतलाया था कि मिलके निकाह मिलके रकबी के साथ जमा नहीं हो सकती, क्योंकि मिलके रकबी आला है और मिलके निकाह अदना है, तो लिहाजा बीवी को जैसे ही अपने खावन की मिलके रकबी हासिल हुई साथ ही निकाह फासिद हो गया, निकाह क्या हो गया, फासिद हो गया। अब बाद में फिर अलग निकाह करना पड़ेगा भाई। काला, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, व इदा कानतिल हुर्रतु तहत अब्दिन, जब कोई आजाद औरत किसी गुलाम के तहत हो यानी उसकी मनकूहा हो, फकालत ली मौलाहु आतिकहु अन्नी बि अल्फिन, तो उस औरत ने उस गुलाम के आका से कहा कि इसको आजाद कर दे मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले में, फाफाला, तो आका ने ऐसा ही किया, उसने गुलाम को आजाद कर दिया, फासदन निकाह, तो निकाह क्या हो गया, फासिद हो गया। तो किस वजह से निकाह फासिद हुआ, क्योंकि बीवी को मिलकर रकबी हासिल हो गई अपने खावंद की, और मिलकर रकबी के साथ मिलकर निकाह बाकी नहीं रह सकता है, और इसलिए भी क्योंकि जब यह खावंद था, खावंद तो मालिक होता है बीवी के मुनाफे का, खावंद मालिक होता है, और जब बीवी उसकी मालिकन बन गई तो खावंद उसका ममलूक बन गया, और एक ही शख्स मालिक और ममलूक नहीं हो सकता
जी।
एक चीज बनेगा, या वो मालिक बनेगा या ममलूक, और ममलूक होना कवि था क्योंकि वो मिलकर रकबी थी, तो लिहाजा जो मालिक होना था यानी मिलकर निकाह, उसको उसने खत्म कर दिया
जी।
उस मिलकर रकबी ने मिलकर निकाह को खत्म कर दिया। तो दो वजह मैंने जिक्र कर दी, एक वजह क्या कि मिलकर रकबी के साथ मिलकर निकाह जमा नहीं हो सकता, और नीज इसलिए भी क्योंकि मालिकियत और ममलूकियत का जमा होना लाजिम आएगा एक ही शख्स में, एक शख्स या तो मालिक हो सकता है या ममलूक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ये मुतनाफियन है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो खावंद जो है वो ममलूक भी हो गया और मालिक भी हुआ, और ममलूक और मालिक एक शख्स नहीं हो सकता, ममलूक हुआ अपनी बीवी का और मालिक भी किसका हुआ, अपनी बीवी का, कि उसके मुनाफिया का मालिक है, तो लिहाजा इस सूरत में निकाह फासिद हो जाएगा। तो कहते हैं फफाअला, तो उस आका ने ऐसा ही किया, फसादा निकाह, तो निकाह फासिद हो जाएगा। वकाल जुफर रहमहुल्लाहु ला यफसुदु, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह निकाह फासिद नहीं होगा। इमाम जुफर फरमाते हैं कि बीवी ने आका से कहा है कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो, को कहते हैं ये नहीं हो सकता, गुलाम आका का है और आजाद बीवी की तरफ से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, या तो पहले इसको खरीदो फिर ही तुम आजाद कर सकती हो, बगैर मालिक हुए तुम इसको आजाद नहीं कर सकती, लिहाजा ये जो गुलाम जिसको आका ने आजाद किया है, इमाम जुफर फरमाते हैं ये आका की तरफ से ही आजाद होगा, उस औरत की तरफ से आजाद नहीं, औरत इसकी मालिकन ही ना बनी, जब मालिकन नहीं तो निकाह भी अब फासिद नहीं होगा, तो इमाम जुफर के नजदीक निकाह सही रहेगा। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला ला यफसुदु, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि निकाह फासिद नहीं होगा। व असलुहु, और इस इख्तिलाफ की असल यानी इसका जाबता यह है कि अन्नहु यक़ऊल इत्क़ु अनिल आमिर इंदाना, कि हमारे नजदीक आजादी जो है वह हुक्म देने वाले की तरफ से वाक होगी। हुक्म किसने दिया था, बीवी ने, तो जो आमिर है आजादी उसी की तरफ से होगी, कैसे आजादी उसकी तरफ से होगी कि वहां इक्तिजान बैर को माना जाएगा और फिर तौकील को माना जाएगा, और तो चुनाचे बीवी यानी आमिर की तरफ से गुलाम आजाद होगा, जबकि उनके नजदीक आमिर की तरफ से नहीं बल्कि मामूर यानी जिसको हुक्म दिया गया था जो आका है, आका ही की तरफ से गुलाम आजाद होगा, क्योंकि बीवी तो उसकी मालिक ही नहीं है भाई। वह असलुहु, और इस इख्तिलाफ का जाबता यह है कि अन्नहु यक़ऊल इत्क़ु अनिल आमिर इंदना, कि जो आजादी है हुक्म देने वाले की तरफ से वाक़े होगी हमारे नजदीक। हत्ता यकूनुल वलाउ लहू, भाई यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, यकूनु पर रफा पड़ेंगे। मैंने आपको बतलाया कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो यह कि हत्ता का माबाद माकबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल हो, और नीज वो हत्ता सबबियत का या गाया का फायदा दे रहा हो, तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा। तो कहते हैं वह असलुहु अन्नहु यक़ऊल इत्क़ु अनिल आमिरी, और असल इसकी यह है कि आजादी आमिर की तरफ से वाक़े होगी। इंदाना, हमारे नजदीक। हत्ता यकूनुल वला उलहू, यहां तक के वला भी उसी के लिए होगी। गुज़श्ता सबक में मैंने आपको बतलाया था वला किसे कहते हैं, माले मीरास को, मुअतिक को, आजाद करने वाले को जो माले मीरास मिलता है मुअतक की तरफ से, उसको वला कहते हैं, उसको वला कहते हैं। मैंने बताया कि मैयत के माल में सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम करते हैं, फिर उसके कर्जे अदा किए जाते हैं, फिर अगर उसने कोई वसीयत की है तो सुलुस के अंदर वो वसीयत नाफिज की जाती है, उसके बाद वारिसों का नंबर आता है, और वारिसों के अंदर सबसे पहला दर्जा ज़विल फुरूज का है, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, और उनको देने के बाद माल बच जाए तो वह सारा माल आसबात ले जाते हैं, आसबा नसबी, जो नसब के एतबार से आसबात हैं वो ले जाएंगे, और अगर आसबा नसबी न हो तो फिर इस सूरत में माल बचा हुआ है, अगला दर्जा फिर आसबा सबबी का है, यानी मौतिक मैयत का है, और ये जो मौतिक को माल मिलेगा इसको वला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वला। मसलन किसी जमाने में फर्ज करो वो मैयत क्या थी, गुलाम थी, इसको किसी ने आजाद किया था, तो अगर इस मैयत का कोई मौतिक मौजूद है तो फिर इस सूरत में वो इसका आसबा सबबी है। क्या है? आसबा सबबी है, क्योंकि वो इसकी जिंदगी का सबब बना था। भाई देखो, ये जो बाप है ये बेटे का वारिस क्यों बनता है? क्योंकि बाप उसकी जिंदगी का सबब बना है, बाप बेटे की जिंदगी का सबब बना है, इसलिए बाप दादा वगैरह वारिस बनते हैं। इसी तरह ये जो गुलामी है ये मौत की तरह है, क्योंकि गुलाम के कोई इख्तियारात नहीं होते, तो जिस शख्स ने इस गुलाम को आजाद किया उसने इस गुलाम को गोया नई जिंदगी दे दी। भाई तो जब नई जिंदगी दी है तो ये भी वारिस बनेगा, जैसे बाप ने जिंदगी दी थी तो वो वारिस बन रहा है, तो ये मौतिक भी वारिस बनेगा, लेकिन इसका दर्जा असबा नसबी के बाद है। तो अगर मैयत का कोई मौतिक है तो फिर अब इसको सारा माल मिल जाएगा, और अगर मौतिक ही नहीं है तो फिर उसके बाद ज़विल अरहाम वगैरह को माल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? वह असलू, और इसका जाब्ता हमारे नजदीक यह है इस इख्तिलाफ का, कि अन्नहु यकउल इत्क अनिल आमिर इंदना, कि आजादी हमारी तरफ से हुक्म देने वाले की तरफ से होगी, हत्ता यकूनुल वला उलहू, यहां तक कि वला जो है वो भी इसी आमिर के लिए होगा, हुक्म देने वाले के लिए, इसी को मौतिक शुमार करेंगे। लिहाजा ये जो गुलाम या बांदी जिसको आजाद किया है, अगर इसका इंतकाल हुआ तो फिर उसी तरह वरासा तरतीब से, उसी तरह तरतीब से उसका माल कफन दफन पे लगाएंगे, फिर कर्जे अदा करेंगे, फिर बाकी जो बच जाए उसके सूलत में वसीयत नाफिज करेंगे, फिर इस गुलाम के अगर कोई जवील फुरूस हैं उनमें माल तकसीम करेंगे, फिर अगर माल बच गया तो अगर गुलाम के कोई आसबात हैं, औलाद वगैरह है, तो फिर उनको माल मिलेगा, लेकिन अगर आसबात नहीं है तो फिर यह जो मौतिक है जिसने इस गुलाम को आजाद किया था उसको सारा माल दे देंगे, वो है आसबा सबबी। भाई तो लिहाजा हत्ता यकूनुल वला उलहू, यहां तक के वला भी इस आजाद करने वाले के लिए होगी, यानी ये जो आमिर है हुक्म देने वाला है, वलव नवा बिहिल कफारत यखरुजु अन उहदतिहा। देखो हमारे नजदीक ये जो औरत ने कहा था आतिकहु अन्नी बि अल्फिन, ये हुक्म देने वाली है, तो हमारे नजदीक ये गुलाम को अगर आका आजाद करता है इस बात पर तो ये आजादी किसकी तरफ से शुमार होगी? उस औरत की तरफ से, वो जो हुक्म देने वाली है, जब उसकी तरफ से शुमार है तो वो हुई मुअतिका, आजाद करने वाली, तो वला भी उसको मिलेगी। और अगर उसने इसके जरिए किसी कफारे की नीयत की तो कफारा भी अदा हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं बास कफारात के अंदर शरीयत ने गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया है, मसलन कोई जिहार कर ले अपनी बीवी से, यानी उसको मां वगैरह से तशबीह दे दे, तो फिर इस सूरत में कफारा जिहार क्या है? एक गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा। अगर उसकी इस्तेतात ना हो तो फिर 60 मुसलसल रोजे रखना पड़ेंगे, और अगर उसकी भी इस्तेतात ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो देखा, कफारा जिहार में भी गुलाम या बांदी का आजाद करना है, इसी तरह कफारा यमीन के अंदर भी है, कसम, किसी कोई कसम तोड़ देता है तो उसका कफारा क्या है? एक गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा, या 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, या 10 मिस्कीनों को लिबास पहनाना पड़ेगा, उनको कपड़े देने पड़ेंगे, और अगर इनकी इस्तेताअत ना हो तो फिर 3 रोजे मुसलसल रखने पड़ेंगे। तो देखो, कसम के कफारे में भी गुलाम आजाद किया जाता है, और इसी तरह कत्ल का जो कफारा है, कत्ल के अंदर भी अगर किसी शख्स से गलती से कोई मुसलमान कत्ल हो गया तो इस सूरत में उस पर कफारा भी आता है कि एक मोमिन गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा या 60 रोजे मुसलसल रखना पड़ेंगे। तो देखो कफारात के अंदर भी गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया है शरीयत ने। तो अगर यह जो हुक्म देने वाला था कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो और ये इसमें कफारे की नीयत करता है तो हमारे नजदीक ये आजादी इसी की तरफ से हुई है, लिहाजा इसका कफारा भी अदा हो जाएगा। यह माना है वलव नवा बिहिल कफारा था, और अगर इसके लिए आमिर ने किसी कफारे का इरादा कर लिया या खुरुज अन उहदतिहा तो वो इसके जरिए अपनी जिम्मेदारी से निकल जाएगा यानी कफारा अदा हो जाएगा। वाइंदहु या कौवानिल मामूरी, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक ये जो आजादी है ये मामूर की तरफ से वाकई होगी। आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया है यानी वो जो गुलाम का आका है। वो तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि ये आजादी यकाउ अनिल मामूरी, ये मामूर की तरफ से यानी गुलाम का जो आका है उसकी तरफ से आजादी वाकई होगी। लिअन्नहु तलबा अन युअतिकल मामूर अब्दहु अनहु वहादा मुहालुन। वो फरमाते हैं कि देखो आमिर ने मामूर से कहा, आमिर ने मामूर से कहा कि तुम अपने गुलाम को मेरी तरफ से 1000 के बदले आजाद कर दो। जरा 1000 को पैसों को एक तरफ रख दें। आमिर ने मामूर को कहा कि तुम अपने गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो। कहते हैं यह कैसे हो सकता है कि गुलाम एक का है और आजाद दूसरे की तरफ से हो जाए, यह नहीं हो सकता, यह महाल है भाई। तो वो फरमाते हैं ले अन्नहु तलबा, इसलिए क्योंकि आमिर ने ये बात तलब की है, उसने इस बात का मुतालबा किया है। अन युअतिकल मामूर अब्दहु, कि मामूर अपने गुलाम को आजाद कर दे। अनहु, इस आमिर की तरफ से। वहादा मुहालुन, और ये बात तो महाल है। ले अन्नहु ला इत्कफी माला यमलिकुहु इब्नु आदमा, इसलिए क्योंकि आजादी नहीं हो सकती उस चीज के अंदर जिसका इब्ने आदम मालिक ना हो। इब्ने आदम यानी इंसान जिस चीज का मालिक ना हो उसके अंदर उसकी तरफ से आजादी भी नहीं हो सकती। पहले मालिक तो हो फिर उसकी तरफ से आजादी होगी। तो कहते हैं लिअन्नहु ला इत्क फी मा ला यमलिकुहु इब्नु आदमा, इसलिए क्योंकि आजादी नहीं है उस गुलाम बांदी के अंदर जिसका इब्ने आदम मालिक ना हो। फलम यसिहत तलबु, लिहाजा इस आमिर की तलब ही सही नहीं है, इसका मुतालबा ही सही नहीं है। फयकउल इत्कु अनिल मामूरी, लिहाजा ये आजादी जो है मामूर यानी आका की तरफ से होगी। तो जब आका की तरफ से आजादी हुई है तो औरत गुलाम की मालिका भी ना बनी, जब मालिका नहीं बनी तो निकाह भी फासिद ना हुआ भाई। ये किसकी दलील है? इमाम जुफर की। अब हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील ये है अन्नहु अमकना तस्हीहुहु। मैंने आपको बतलाया कि फुकहा की कोशिश होती है कि आकिल बालिग के कलाम को सही सूरत पर महमूल किया जाए, बजाय इसके कि उसके कलाम को लग्व करार दिया जाए, कोशिश की जाती है कि कलाम की इसलाह हो सके। और यहां पर भी आतिकहु अन्नी बिअल्फिन, कि इस गुलाम को मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले आजाद कर दो, इस कलाम की इसलाह हो सकती है। इस कलाम की इसलाह हो सकती है किस तरह के? इससे पहले इक्तिजाअन बैअ को मान लिया जाए। वलना अन्नहु अमकना तस्हीहुहु, और हमारे नजदीक आमिर के कलाम की तस्ही मुमकिन है, उसको दुरुस्त करना मुमकिन है। बितकदीम मिल मिल की बितरीके इक्तिजाई, कि उसकी मिल्कियत को मुकदम कर दिया जाए इक्तिजा के तरीके पर, यानी इक्तिजाअन बैअ को साबित किया जाए। ये कलाम तकाजा कर रहा है आतिकहु अन्नी बिअल्फिन, ये कलाम तकाजा कर रहा है कि इससे पहले क्या मानो? बैअ को मान लो, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं वलना अन्नहु अमकना तस्हीहुहु, के आमिर के कलाम की तस्हीह हो सकती है। बितकदीम मिल मिल की, के उसकी मिल्कियत को मुकदम कर दिया जाए। बितरीक इक्तिजाई, इक्तिजा के तरीके पर। इजिल मिल को शर्त उन लिसहत इत्क अनहु, इसलिए क्योंकि मिल्कियत शर्त है लिसहत इत्क अनहु, आमिर की तरफ से आजादी के सही होने के लिए। आमिर की तरफ से आजादी तभी सही हो सकती है जब पहले मिल्कियत हो उसकी। तो लिहाजा मिल्कियत को इक्तिजाअन मान लिया जाए। तो कहते हैं इदिल मिल्क शर्त उन ले से हतिल इत्क अन्हू, इसलिए क्योंकि आमिर की मिल्कियत शर्त है उसकी तरफ से आजादी के सही होने के लिए। फयसीरु कौलुहू आतिक, तो आमिर का ये जो कौल आया था ना आतिक कि आजाद कर दे, ये तलब तमलीक मिन्हू, ये उस गुलाम के आका से तमलीक को तलब किया जा रहा है। तलब तमलीक मिन्हू, तमलीक दूसरे को मालिक बनाना, यानी आमिर ने क्या कहा आतिक तू आजाद कर दे, मालूम हुआ उससे तमलीक का मुतालबा कर रहा है, मुझे मालिक बनाओ क्योंकि फिर ही मेरी तरफ से आजादी हो सकती है, वैसे आजादी नहीं हो सकती। तो कहते हैं फयसीरु कौलुहू आतिक, तो आमिर का ये जो कौल है आतिक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तलब तमलीक मिन्हू, ये तलब ये खबर है यसीरु की, यसीरु और यसीरु किस में से है अफाले नाकिसा में से, और अफाले नाकिसा क्या करते हैं अपनी खबर को नसब देते हैं, तवज्जो है। और नीज ये याद रखना तलबत तमलीक मिन्हू, ये तलब को फेल ना समझ लेना, ये फेल नहीं है, बज़ाहिर तो तलबा फाला वजन बन रहा है तो आपके जहन में आएगा शायद ये फेल है, नहीं ये मस्दर है, मस्दर है। और आखिरी हर्फ पर जो फतहा आ रहा है वो इस यसीरु की खबर होने की वजह से है। तो कहते हैं फयसीरु कौलुहू आतिक, तो आमिर का ये जो कौल है आतिक ये हो गया, ये बन गया, क्या बन गया तलबत तमलीक मिन्हू, उस मामूर से तमलीक का तलब करना
जी।
कि वो उससे तमलीक को तलब कर रहा है, यानी मामूर से तमलीक को तलब कर रहा है कि वो इसको मालिक बना दे, बिल अल्फी कितने के बदले 1000 दिरहम के बदले। सुम्म अमरहू, याद रखो ये भी मस्दर है और ये अमरहू का अतफ है तलबत तमलीक पर, तलब भी क्या था मस्दर और ये अमरहू अम्र भी क्या है मस्दर है और तलब मंसूब था यसीरु की खबर है तो अमरहू ये भी क्या है मंसूब पढ़ेंगे इसको। तो सुम्म अमरहू बि इताक अब्दिल आमिर अनहू, देखो यसीरु का इसम है कौलुहू आतिक, आमिर का जो कौल आतिक है फयसीरु ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तलबत तमलीक मिन्हू बिल अल्फी कि वो उसे तमलीक का मुतालबा कर रहा है 1000 के बदले। सुम्म अमरहू बि इताक अब्दिल आमिरी, फिर वो हुक्म दे रहा है कि वो आमिर के गुलाम को आजाद कर दे, अनहू आमिर की तरफ से वो हुक्म दे रहा है। आमिर ने क्या कहा आतिक मेरी तरफ से गुलाम को क्या कर दे आजाद, तो ये जो आतिक कहा इसके अंदर गोया वो मुतालबा कर रहा है कि मुझे इस गुलाम का मालिक बनाओ और फिर मेरी तरफ से क्या कर दो आजाद कर दो, क्योंकि बगैर मालिक बनाए तो आजाद उसकी तरफ से नहीं हो सकता, तो गोया इसी के जिमन में तमलीक का भी मुतालबा आ गया इक्तेजान, किस तरीके से इक्तेजान क्योंकि उसके बगैर उसकी तरफ से आजाद नहीं हो सकता भाई। तो लिहाजा आमिर का कौल आतिक जो है ये तलब तमलीक भी हो गया और अमर बिल इताक भी हो गया, क्या हो गया आमिर का कौल आतिक ये क्या बन गया तलब तमलीक भी बन गया और अमर बिल इताक भी बन गया। तवज्जो है यह इबारत पे फिर जरा नजर डालो, कहते हैं फयसीरु कौलुहू आतिक, आमिर का कौल जो आतिक है वो बन गया, क्या बन गया तलबत तमलीक सुम्म अमरहू बिल इताक, बाकी लफ्जों को जरा छोड़ दें तलबत तमलीक सुम्म अमरहू बिल इताक, तो आमिर का कौल आतिक जो है वो तलब तमलीक भी बन गया सुम्म अमरहू बिल इताक और फिर अमर बिल इताक भी बन गया। अब इबारत समझ में आ गई, तो कहते हैं फयसीरु कौलुहू आतिक, तो आमिर का कौल आतिक जो है तलबत तमलीक मिन्हू बि अल्फिन ये हो गया मामूर से तमलीक का मुतालबा करना अल्फ के बदले में। सुम्म अमरहू बि इताक अब्दिल आमिरी, फिर ये आमिर के गुलाम को आजाद करने का हुक्म बन गया अनहू आमिर की तरफ से कि वो गुलाम आजाद करे किसकी तरफ से आमिर की तरफ से। वकौलुहू आतक्तु, फिर उसके बाद आमिर ने तो कहा था आतिक, उस आतिक के अंदर तमलीक का मुतालबा भी आ गया और आजाद करने का हुक्म भी आ गया। फिर अब वकौलुहु आतक्तु, अब आका ने क्या कहा था, आतक्तु मैंने गुलाम आजाद कर दिया, तो इसमें वो दोनों चीजें आ जाएंगी। आमिर ने किन चीजों का मुतालबा किया था, आमिर ने आतिक कहा था, लेकिन यही आतिक तलब तमलीक भी हो गई और अमर बिल एताक भी हो गया। लिहाजा जब जवाब के अंदर आका ने कहा आतक तो मैंने आजाद कर दिया, तो इसमें वो दोनों चीजें आ गईं, इसमें तमलीक भी हो गई और फिर उसकी तरफ से एताक भी हो गया। यह माना है वकौलुहु और मामूर का, यानी आका का जो कौल है आतक तो कि मैंने गुलाम को आजाद कर दिया, तमलीक मिन्हु ये उसकी तरफ से मालिक बनाना भी है, सुम्मल एताक अन्हु फिर आमिर की तरफ से आजाद करना भी है, दोनों चीजें हो गईं। वह इदा सबतल मिल्क लिल आमिरी, और जब मिल्कियत आमिर के लिए साबित हो गई, फसदन निकाह हो तो वो निकाह फासिद हो गया, लित तनाफी बैनल मिल्कैनी, इसलिए क्योंकि इन दोनों मिल्कियतों के अंदर मुनाफात है, मिलके निकाह और मिलके रकबी ये दोनों जमा नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई, मसला समझ में आ गया। तो हमारे नजदीक जब एक औरत ने गुलाम से निकाह किया है और उसके आका से वो कहती है आतिक हु अन्नी बि अल्फिन, इसको मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले आजाद कर दे, और फिर आका ऐसा कर दे, तो इस सूरत में निकाह फासिद हो जाएगा, क्योंकि मिलके रकबी के साथ मिलके निकाह जमा हो गई, और मिलके निकाह तो मिलके रकबी के साथ जमा नहीं हो सकती, क्योंकि मिलके रकबी आला है, तो जो अदना है वो फासिद हो जाएगा, यानी मिलके निकाह, और जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक निकाह फासिद नहीं होगा। आगे देखिए वलौ कालत आतिकहु अन्नी वलम तुसम्मी मालन लम यफसुदिन निकाहु वल वला उलिल मुअतिक। अब दूसरी सूरत, पहली में बीवी ने माल जिक्र किया था आतिकहु अन्नी बी अल्फिन, इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दे 1000 के बदले। दूसरी सूरत है वो माल जिक्र नहीं करती, सिर्फ ये कहती है आतिकहु अन्नी, इसको मेरी तरफ से आजाद कर दे, और आका ने उसी तरह आतक तू मैंने क्या कर दिया, इस गुलाम को आजाद कर दिया। तो हमारे फुकहा फरमाते हैं तरफैन रहिमहुमल्लाह कि इस सूरत में ये जो औरत ने कहा है आतिकहु अन्नी मेरी तरफ से आजाद कर दे, इस सूरत में औरत ने माल जिक्र नहीं किया, तो यहां पर भी उसी तरह मसला होगा। औरत ने क्या कहा है, मेरी तरफ से गुलाम आजाद कर दे, माल जिक्र नहीं किया, तो गोया किन चीजों का मुतालबा कर दिया कि मुझे इसका मालिक बना दो और फिर मेरी तरफ से इसको आजाद कर दो, दोनों चीजों का मुतालबा किया है। और मालिक बनाना, यहां तो अइवज के बगैर मालिक बनाना होगा, और अइवज के बगैर मालिक बनाने को क्या कहते हैं, हिबा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिबा। और मैंने आपको बतलाया था कि हिबा के अंदर कब्जा जरूरी है। यह किताब मेरे सामने पड़ी है और मैं आपसे कहता हूं मैंने यह किताब आपको तोहफे के तौर पर दे दी, तो सिर्फ मेरे कहने से आप मालिक नहीं बने, बल्कि जब आप कब्जा कर लेंगे फिर आप इस किताब के मालिक बनेंगे। तो हिबा कब ताम होगा, कब कामिल होगा, जब जब शय महू पर क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। तो गोया यहां पर भी बीवी ने कहा है इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दो और कोई अइवज जिक्र नहीं किया, तो गोया वो तमलीक का भी मुतालबा कर रही है और आजाद करने का भी, और यह तमलीक बिला अइवज है, मालूम वो हिबा का तकाजा कर रही है कि मुझे हिबा के तरीके पर मालिक बना दो, और फिर आका ने उसको आजाद कर दिया। तो फिर याद रखो इस सूरत में तरफैन फरमाते हैं कि यह गुलाम औरत की तरफ से आजाद नहीं होगा। वजह यह कि यहां पर तमलीक को अगर मुकदम मानेंगे तो वह हिबा के तरीके पर हो सकती है, और हिबा जो है वह तो कब्जे के बगैर ताम नहीं होता, हिबा कब्जे के बगैर ताम नहीं होता। लिहाजा यहां जब आका आजाद करेगा तो आका की तरफ से ही आजाद होगा, क्योंकि औरत की तरफ से तो उस गुलाम पर कब्जा ही नहीं पाया गया भाई। लिहाजा इस सूरत में जब आका की तरफ से गुलाम आजाद हुआ है तो औरत को मिलके रकबी हासिल ही नहीं हुई, जब मिलके रकबी उसे हासिल ही नहीं हुई तो निकाह भी फासिद नहीं है। बात समझ में आ गई। वलौ कालत आतिकहु अन्नी, और अगर उस औरत ने कहा कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दे, देखो पैसे जिक्र नहीं किया, इवज जिक्र नहीं किया, वलम तुसम्मी मालन, और उसने माल जिक्र नहीं किया, लम यफसुदिन निकाहू, तो फिर इस सूरत में निकाह फासेद नहीं होगा अगर आका ऐसा कर देता है। वल वला उलिल मुअतिकी, और वला मुअतिक के लिए होगी। इस सूरत में मुअतिक कौन बन रहा है? आका बन रहा है, आमिर नहीं, क्योंकि आमिर कब्जा करेगा तो तब हिबा पूरा होगा और फिर उसकी तरफ से आजाद हो सकता है। तवज्जो है, देखो वहां वो जो आका ने कहा था आतक्तु, वहां आतक्तु के जिमन में हमने बैअ को भी मान लिया था। भाई देखो ना, औरत का कलाम तो बगैर बैअ के मानने सही हो ही नहीं सकता। गुलाम किसी और का है और औरत कह रही है मेरी तरफ से आजाद कर दो, तो ये तो कलाम सही हो ही नहीं सकता, औरत की तरफ से वो आजाद हो ही नहीं सकता। इल्ला ये कि वहां इक्तिजान पहले क्या मान लिया जाए, बैअ को। तवज्जो है, तो मालूम हुआ जो आका गुलाम को आजाद करता है आतक्तु, वहां इक्तिजान पहले बैअ को मानना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने जो कहा आतिक तू आजाद कर दे, तो वो तमलीक को भी तलब कर रही है और अपनी तरफ से एताक को भी तलब कर रही है कि मेरी तरफ से आजाद कर दो, और साथ इवज जिक्र किया है, तो वो तमलीक बिल इवज क्या बन गई? बैअ। तो तमलीक बिल इवज यानी बैअ का भी उसने मुतालबा किया और फिर अपनी तरफ से उसको आजाद करने का भी मुतालबा किया। चुनांचे जब आका ने कहा आतक्तु, मैंने आजाद कर दिया, तो इसी आतक्तु के जिमन में बैअ भी साबित हो गई और फिर उसके बाद आका की तरफ से गुलाम भी आजाद हो गया। तो हमारे फुकहा फरमाते हैं कि आतक्तु एक कौल है और कौल के जिमन में कौल को तो माना जा सकता है, कौल के जिमन में कौल को माना जा सकता है, कौल के जिमन में फेल को नहीं माना जा सकता। याद रखो ये जो बैअ है, ये बैअ किस चीज का नाम है? ईजाब और कबूल का। मैंने कहा ये किताब मैंने आपसे खरीद ली 100 रुपए में और आपने कहा मैंने बेच दी, तो देखो बैअ हो गई। तो बैअ किस चीज का नाम है? ईजाब और कबूल का, यानी कौल का नाम है। किसका नाम है? कौल का नाम है। और आतक्तु के जिमन में हमने बैअ को माना है। आतक्तु भी क्या है? कौल लफ्ज है। और बैअ भी किस चीज का नाम है? कौल, यानी ईजाब और कबूल का। तो एक कौल के जिमन में इक्तिजान दूसरे कौल को साबित किया जा सकता है, आतक्तु भी कौल, और उसके जिमन में जिस बैअ को साबित किया वो भी कौल है। तो एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को इक्तिजान माना जा सकता है, लेकिन एक कौल के जिमन में फेल को इक्तिजान नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिबा के अंदर कब्जा शर्त है। हिबा के अंदर कब्जा होगा फिर ही हिबा ताम होगा, उसके बगैर हिबा ताम नहीं। और कब्जा तो एक फेल का नाम है, कब्जा तो कौल का नाम नहीं है, उसमें तो बाकायदा फेल करना पड़ता है, चीज को अपने कब्जे में लेना पड़ता है। तो पिछले मसले के अंदर औरत ने इवज जिक्र किया था और तमलीक का मुतालबा किया था, और इवज के साथ जो तमलीक होती है वो बैअ, लिहाजा आतक्तु भी कौल है और इसके जिमन में हमने बैअ को साबित करना है। तो एक कौल के जिमन में दूसरा कौल इक्तिजान साबित हो सकता है, लेकिन यहां पर औरत ने इवज जिक्र नहीं किया और वो तमलीक का मुतालबा भी कर रही है और अपनी तरफ से आजाद करने का मुतालबा भी कर रही है, और बगैर इवज के तमलीक का मुतालबा, ये दरअसल किस चीज का मुतालबा है? हिबा का। और हिबा के अंदर क्या जरूरी है? कब्जा जरूरी है। लिहाजा आतक्तु के जिमन में हम बैअ जो कौल है उसको तो साबित कर सकते हैं इक्तिजान। तो एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को तो इक्तिजान साबित किया जा सकता है, लेकिन कौल के जिमन में फेल को इक्तिजान साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब्जा एक फेल हिस्सी है भाई, जो आंखों से नजर आता है भाई। बात समझ में आ गई? तो कौल के जिमन में कौल को तो इक्तिजान साबित किया जा सकता है, लेकिन कौल के जिमन में फेल को साबित नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहां पर इक्तिजान हिबा साबित नहीं होगा, क्योंकि उसमें कब्जा जरूरी है। जब इक्तिजान हिबा नहीं साबित, तो औरत उसकी मालिकन ना बनी उस गुलाम की। जब औरत मालिक ना बनी, तो यह गुलाम जो आजाद हुआ यह आका की तरफ से आजाद हुआ। जब आका की तरफ से आजाद हुआ तो फिर निकाह भी फासिद नहीं है। तो कहते हैं वलव कालत आतिकहु अन्नी वलम तुसम्मी मालन, और अगर औरत ने कहा कि इस गुलाम को मेरी तरफ से आजाद कर दे, वलम तुसम्मी मालन और उसने माल जिक्र नहीं किया, लम यफसुदिन निकाह, तो निकाह फासिद नहीं होगा, वल वला उलिल मुअतिकी और वला आजाद करने वाले के लिए होगी, यानी आका के लिए होगी, आमिर के लिए नहीं होगी। वहाजा इंद अबी हनीफत व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, और ये तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं हादा वल अव्वलु सबाउन, ये और पहली सूरत बराबर हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जैसे पिछले मसले के अंदर आपने इक्तिजाअन बैअ को मानना था, यहां इक्तिजाअन हिबा को मान लेंगे और दोनों सूरतों के अंदर निकाह फासिद हो जाएगा। इक्तिजाअन हिबा को मान लेंगे, औरत मालिक बन गई। भाई हम कहते हैं हिबा के अंदर तो कब्जा जरूरी है, कहते हैं नहीं, यहां कब्जे का एतबार साकित हो जाएगा, कब्जे का एतबार करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बैअ इक्तिजाअन साबित हुई थी, इस तरह हिबा भी वो इक्तिजाअन साबित मानते हैं। जब हिबा इक्तिजाअन साबित हो गया तो औरत मालिक बन गई, जब औरत मालिक बन गई तो यह गुलाम अब औरत की तरफ से आजाद हुआ, लिहाजा निकाह फासिद हो गया। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, और नीज वला भी उस औरत ही के लिए होगी। भाई तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हादा वल अव्वलु सवा, उनकी ये और पिछला मसला ये दोनों बराबर हैं। लिअन्नहु युकद्दिमु तमलीक बिगैर इवज़िन तसहीहन लितसर्रुफिही, लिअन्नहु युकद्दिमु तमलीका, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस तमलीक को मुकद्दम करते हैं बिगैर इवज़िन, ये जो तमलीक बगैर इवज़ के है। बैअ में भी तमलीक होती है, दूसरे को मालिक बनाया जाता है, लेकिन इवज़ के बदले में, किसके बदले में? इवज़ के बदले में पैसे या दिरहम दीनार वगैरह वसूल किए जाएंगे। और हिबा में भी दूसरे को मालिक बनाते हैं, लेकिन वो बगैर इवज़ होता है। तो वहां पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहां जैसे आपने तमलीक बिल इवज़ को इक्तिजाअन माना था, किसको? तमलीक बिल इवज़ को आपने इक्तिजाअन माना था यानी बैअ को, तो यहां पर तमलीक बगैर इवज़ को भी इक्तिजाअन मान लेंगे। तो कहते हैं लिअन्नहु युकद्दिमु तमलीक बगैर इवज़िन, इसलिए कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तमलीक बगैर इवज़ को मुकद्दम करते हैं तसहीहन लितसर्रुफिही, उस आमिर के तसर्रुफ को दुरुस्त करने के लिए, कि फिर ही उसका तसर्रुफ दुरुस्त हो सकता है। वो जो उसने कहा था ना आतिकहु अन्नी, फिर ही वो तसर्रुफ सही हो सकता है। वयुस्कितु एतबार अल-कब्ज़ी, और वो कब्जे के एतबार को साकित कर देते हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कब्जे के एतबार को साकित कर देते हैं। لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيكَ بِغَيْرِ عِوَزٍ, इसलिए क्योंकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला जो हैं तमलीक बगैर इवज उसको मुकद्दम करते हैं, यानी बिला इवज तमलीक को मुकद्दम मानते हैं। तसहीहन लितसर्रुफिही, उस आमिर के तसर्रुफ को दुरुस्त करने के लिए, कि उसके बगैर उसका तसर्रुफ सही नहीं हो सकता, उसने तो कहा है आतिकु अन्नी। वयुस्कितु एतबार अल-कब्ज़ी, और वो कब्जे के एतबार को साकित करते हैं। कमा इदाका नाले ही कफारत जिहारिन, जैसे कि किसी शख्स पर कफारा जिहार हो। फअमरा गैरहु अन युतइमा अन्हु, तो वो किसी दूसरे को हुक्म देता है कि वो उसकी तरफ से खिला दे। भाई देखिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हिबा के अंदर भी बाज़ औक़ात कब्जे का एतबार साकित हो जाता है। जैसे एक शख्स पर कफारा जिहार है और वो गुलाम या बांदी भी आजाद नहीं कर सकता और 60 रोजे भी मुसलसल नहीं रख सकता, तो फिर अब वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाता है, और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के पैसे भी उसके पास नहीं है। वो अपने किसी जानने वाले से कहता है कि मेरी तरफ से 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक हमारे अइमा फरमाते हैं कि अगर वो शख्स मिस्कीनों को खाना खिलाएगा तो ये हुक्म देने वाले की तरफ से अदा होगा, जिसने उसको खाना खिलाने का कहा था उसकी तरफ से अदा हो जाएगा और उसका कफारा जिहार अदा हो जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं देखो यहां पर भी उसने जब दूसरे से कहा कि मेरी तरफ से खाना खिला दो, मतलब यह था कि मुझे पहले खाने का मालिक बनाओ फिर मेरी तरफ से फकीरों को खिला दो, तवज्जो है। तो यहां पर गोया वो हिबा का मुतालबा कर रहा है और फिर अपनी तरफ से खाना खिलाने का मुतालबा कर रहा है, और बिल इत्तेफाक यहां पर अगर वो खाना खिला देगा वो शख्स तो ये आमिर ही की तरफ से शुमार होगा। मालूम हुआ यहां पर भी हिबा के अंदर कब्जे का एतबार साकित हो गया, क्योंकि आमिर ने तो खाने पर कब्जा नहीं किया भाई, उस आदमी ने गरीबों को बुलवाया और खिला दिया। तो हमारे इमाम फरमाते हैं ये आमिर की तरफ से अदा हो गया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे इस इतआम तआम के अंदर कब्जे का एतबार साकित हो गया है, इसी तरह यहां पर इस मसले के अंदर भी कब्जे का एतबार साकित हो जाएगा और यह गुलाम औरत की तरफ से ही आजाद होगा और निकाह फासिद हो जाएगा। तो कहते हैं वयुस की तो एतबार अल कब्जी, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कब्जे के एतबार को साकित कर देते हैं। कमा इदाकान अलैही कफारत ज़िहारिन, जैसे कि किसी शख्स पर कफारा ज़िहार हो। फअमरा गैरहु अन युत्इमा अन्हु, तो वो दूसरे को हुक्म देता है कि उसकी तरफ से खाना खिला दे। दलील समझ में आई? मालूम हो उन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कभी कभार कब्जे का एतबार हिबा में साकित हो जाता है, लिहाजा यहां भी साकित हो जाएगा। वलहुमा, जबकि तरफेन की दलील यह है कि अनल हिबता मिन शर्ति हल कब्जु बिन नस्सी, कि हिबा की शर्त में से है कब्जा करना बिन नस्सी, नस की वजह से। मैंने बताया भाई कुरान और हदीस को नस कहते हैं, तो तरफेन जवाब देते हैं कि हिबा के अंदर कब्जा शर्त है, नस के अंदर इसका जिक्र आया है। चुनाचे हदीस में आता है, यह मेरी किताब में बैन सुतूर हदीस दी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तसिहुल हिबतु इल्ला मकबूजतन, कि हिबा सही नहीं होता मगर मकबूज ही, यानी जब उस पर कब्जा कर लिया जाए उस चीज पर। तो तरफेन फरमाते हैं कि देखो यहां पर ला और इल्ला के साथ कलाम जिक्र है, हिबा कब्जे के बगैर सही ही नहीं होता हदीस के अंदर आ गया। तवज्जो है, मालूम हुआ हिबा बगैर कब्जे के हो ही नहीं सकता भाई। तो कहते हैं वलहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अन्नल हिबता मिन शर्ति हल कब्जु बिन नस्सी, कि हिबा जो है इसकी शर्त में से कब्जा करना है बिन नस्सी, नस की वजह से। फला युमकिनु इसकातुहु वला इसबातुहु इक्तिजाअन, फला युमकिनु इसकातुहु, लिहाजा इस कब्जे को साकित करना मुमकिन नहीं है। यह कब्जा किससे साबित है? नस से, और नस में भी किसके साथ है? ला और इल्ला के साथ, कि कब्जे के बगैर हिबा हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा इस कब्जे को साकित नहीं किया जा सकता, नस से पता चल रहा है, तो इसको साकित करना मुमकिन नहीं। इस पर इश्काल होता है कि भाई बैअ को भी आपने इक्तिजाअन माना था और बैअ के अरकान ईजाब और कबूल हैं, और अरकान शय के बगैर तो कोई शय नहीं हो सकती, तो वहां फिर आपने कैसे अरकान बैअ के बगैर ही बैअ को इक्तिजाअन मान लिया था जी। जैसे हिबा के अंदर अगर कब्जा जरूरी है तो बैअ के अंदर ईजाब और कबूल जरूरी हैं, वो अरकान हैं। अरकान शय के बगैर किसी शय का वजूद कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब याद रखना कि याद रखो बैअ के अंदर ये जो ईजाब और कबूल हैं ये अरकान तो हैं लेकिन अरकान जायद हैं, यानी इनके बगैर भी बैअ हो सकती है जी। ये इसकात का एहतमाल रखते हैं लेकिन कब्जा इसकात का एहतमाल नहीं रखता, उसको साकित नहीं किया जा सकता जी। जबकि ईजाब और कबूल साकित हो सकते हैं, कैसे? बैअ ताती के अंदर, ताती आता से है, आता पा आ रही है दरमियान में। देखो ये जो हम अक्सर बुयुआत करते हैं, हमारी बुयू अक्सर बैअ ताती होती हैं जी। मसलन आप दुकान पर जाते हैं और आप दुकानदार से कहते हैं मुझे एक किलो चीनी दे दो, वो चीनी का एक पैकेट उठाकर आपको दे देता है जिसमें पहले से ही एक किलो चीनी बंद है उसके अंदर भाई। अब हालांकि बैअ का ज़ाबिता है कि जब आप कोई चीज वजन के एतबार से लेते हैं तो जरूरी है दुकानदार आपके सामने उस चीज को तोले, वरना आपकी ये बैअ फासिद है भाई जी। ये बैअ फासिद। तो देखो आप गए, आपने कहा मुझे एक किलो चीनी दे दो, उसने एक पैकेट उठाकर आपको दिया और आपने जेब में हाथ डाला, पैसे उसको दिए और वो चीनी उठाकर आ गए, उसने आपके सामने चीनी का वजन नहीं किया। हालांकि फिका का जाब्ता है, इस सूरत में बैअ क्या हो जाती है? फासिद हो जाती है। जो चीज आप वजन या कैल वगैरह के एतबार से ले रहे हो उस खरीदार के सामने उसका वजन करना या उसका मापना जरूरी होता है। तो इससे तो बजाहिर शुबा होता है शायद हमारी सारी बुयुआत ही फासिद हो, तो जवाब के नहीं, ये जो हमारी जितनी बुयुआत हैं ये बैए ताती की कबील से हैं। ताती आता से है, आता का माना एक चीज देना, और इसी को बाबे तफाउल में ले गए ताती, यानी दोनों तरफ से एक शख्स एक चीज देता है दूसरा दूसरी चीज उसका इवज देता है और बैह हो जाती है। तो ये जो देखो आप दुकान पर गए और आपने चीनी तलब की, आपने क्या कहा कि मुझे एक किलो चीनी दे दो, देखो आप तो हुक्म दे रहे हैं, अमर है, और हालांकि इजाब और कबूल तो माजी के सीगे होने चाहिए। तो देखो आपकी तरफ से कोई इजाब नहीं आया और दुकानदार की तरफ से कोई कबूल नहीं आया, उसने चीनी उठाई और आपको दे दी और आपने पैसे उसको दिए और चीनी उठाकर आ गए, इसको बैए ताती कहते हैं, जो बगैर इजाब और कबूल के हो रही है, दोनों तरफ से इता पाया जा रहा है, दुकानदार ने चीनी दी है तो आपने पैसे दिए हैं। तो हमारी अक्सर बुयुआत किस किस्म की हैं? बैए ताती हैं, हम इजाब और कबूल बहुत कम करते हैं भाई। तो जब ये बैए ताती है तो इसमें गोया आपने वो चीनी का पैकेट इतने पैसों में ले लिया, वजन की बात ही नहीं हुई। वो जो आपने कहा था एक किलो चीनी दे दो भाई, वो ईजाब नहीं था, इसलिए क्योंकि वो अमर का सीगा है। ईजाब तो माजी अरबी हो तो माजी का सीगा होना जरूरी है ईजाब और कबूल का, और उर्दू हो तो माजी के सीगे भी जायज हैं और हाल के सीगे भी जायज हैं भाई। तो यहां ना ईजाब पाया गया और ना कबूल, गोया वजन की कोई बात ही नहीं हुई, बस आपने एक पैकेट चीनी ली और उसके इवज दिया, दुकानदार ने भी लेकर रख लिया और आप चीनी लेकर आ गए। तो ये कौन सी बैह हुई? बैए ताती। तो देखो इस बैए ताती के अंदर ना ईजाब है और ना कबूल जी। मालूम हुआ बैह के अंदर ये ईजाब और कबूल अरकान तो हैं लेकिन अरकान जायद हैं, ये भी साकित होने का इहतमाल रखते हैं, जबकि हिबा के अंदर जो कब्जा है वो साकित होने का इहतमाल नहीं रखता। तो कहते हैं फला युमकिनु इसकातुहु, लिहाजा इस कब्जे को साकित करना मुमकिन नहीं है, वला इसबातुहु इक्तिजाअन, और ना ही इस कब्जे को साबित किया जा सकता है इक्तिजाअन। इक्तिजाअन कब्जे को साबित भी नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि मैंने वजह बतला दी कि आतकतु के जिमन में हमने क्या साबित किया था बै को, आतकतु भी कौल और बै भी किसका नाम है? कौल का नाम है। तो एक कौल के जिमन में दूसरा कौल इक्तिजाअन साबित हो सकता है, लेकिन कब्जा तो फेल का नाम है तो कौल के जिमन में कब्जा यानी फेल साबित नहीं हो सकता। कहते हैं वला इस बात हो इक्तिजाअन, और ना ही कब्जे को इक्तिजाअन साबित किया जा सकता है, लिअन्नहु फिअलुन हिस्सियुन, इसलिए क्योंकि कब्जा जो है वो तो एक फिअल हिस्सी है जो आंखों से नजर आता है, फिअल हिस्सी है, बिखिलाफिल बैई, बखिलाफ बैअ के, लिअन्नहु तसर्रुफुन शरईयुन, वो तो तसर्रुफ शरई है, वो एक तसर्रुफ शरई कौली है यानी कौल वाला तसर्रुफ है भाई। यहां फेले हिस्सी आया और साथ तसर्रुफ शरई आया। आपने उसूल फिका में पढ़ा होगा कि अफ़ाल दो किस्म के हैं, कुछ अफ़ाल हिस्सिया हैं और कुछ अफ़ाल शरईया हैं। अफ़ाल हिस्सिया, याद रखो अफ़ाल हिस्सिया वो हैं कि शरीयत ने उनके माना में कोई तब्दीली नहीं की। शरीयत के आने से पहले लोग इसका जो माना समझते थे शरीयत ने भी उसी माना को बरकरार रखा, शरीयत ने भी उसको बरकरार रखा, इसको कहते हैं फ़ेल हिस्सी। जैसे जीना, जीना शरीयत के आने से पहले भी लोग समझते थे कि जीना जो है गैर मिल्क के अंदर वती करना, कि किस चीज का इंसान मालिक नहीं है एक औरत का और उससे वती कर ले, इसको क्या समझते थे? जीना। और शरीयत ने भी इसी माना को बरकरार रखा कि गैर मिल्क के अंदर सोहबत की जाए, ये क्या है? जीना है भाई। तो देखो जिना एक फ़ेल हिस्सी है, शरीयत ने इसके माना में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। और एक होता है फ़ेल शरई, फ़ेल शरई वो है कि जिसके माना में शरीयत तब्दीली पैदा कर दे। जैसे शरीयत के आने से पहले लोग कहते थे कि बैअ जो है वो मुबादलतुल माल बिल माल है, यानी दोनों अफराद की तरफ से माल आता है, एक की तरफ से अगर मबीआ है तो दूसरे की तरफ से भी माल है भाई। तो शरीयत के आने से पहले लोग बैअ किसे कहते थे? मुबादलतुल माल बिल माल। लेकिन शरीयत ने आकर बतलाया नहीं, तुम लोगों को बैअ का पता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ मुबादलतुल माल बिल माल नहीं है, बल्कि इसमें बाहमी रजामंदी भी जरूरी है
जी।
दोनों आदमियों की आपस में। तो देखा, मालूम हुआ शरीयत ने बतलाया कि बैअ जो है वो मुबादलतुल माली बिल माली बित तराजी, यानी बाहमी रजामंदी भी हो, तो इसको फेले शरई कहते हैं। यानी हमें शरीयत ने आकर बैअ बतलाई, इससे पहले तो हमें बैअ का पता ही नहीं था भाई, हम उसका गलत माना समझते थे, तो इसको फेले शरई कहते हैं। समझ में आया? फेले हिस्सी किसे कहते हैं जिसमें माना में शरीयत ने कोई तब्दीली नहीं की, जो पहले लोग समझते थे शरीयत ने भी वही माना रखा है। मालूम हुआ लोग इस फेल को हिस्सन जानते थे और वो सही समझते थे, और फेले शरई वो है कि जिसके माना में आकर शरीयत ने तब्दीली पैदा कर दी। मालूम हुआ लोगों को इसका पहले पता ही नहीं था, शरीयत ने आकर इनको बतलाया है। तो यहां पर भी ये जो बैअ है ये एक तसर्रुफ शरई है, जबकि कब्जा जो है वो तसर्रुफ हिस्सी है। कब्जा क्या है? तसर्रुफ हिस्सी, हिस जिसका ताल्लुक हवास से हो, यानी जो आंखों से नजर आए। तो कब्जा क्या है? तसर्रुफ हिस्सी, या यूं को फ़ेल हिस्सी है। और बैअ क्या है? वो तसर्रुफ शरई है, यानी वो कौल की कबील से है। तो वही बात जो मैंने पहले जिक्र कर दी थी कि आतकतु कौल था, उस आतकतु के जिमन में बै को तो हम मान सकते हैं, क्योंकि बै भी कौल का नाम है, इजाब और कबूल का नाम है। तो एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को इक्तिजान साबित किया जा सकता है, लेकिन कौल के जिमन में फेल को इक्तिजान साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फेल और चीज है, कौल और चीज है भाई। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि कब्जा एक फेल हिस्सी है, यानी फेल का नाम है, ऐसा फेल जो हिस्सा नजर आता है कि इंसान क्या कर ले, एक चीज पर कब्जा कर ले। और जबकि बै जो है वो एक तसर्रुफ शरई है, यानी तसर्रुफ शरई कौली है, यानी कौल की कबील से है। और आतकतु वो कौल है, तो आतकतु के जिमन के अंदर तसर्रुफ शरई कौली यानी बै को तो साबित किया जा सकता है, लेकिन आतकतु कौल के जिमन में फेले हिस्सी को साबित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? वही बात, यानी एक कौल के जिमन में दूसरे कौल को तो इक्तिजान साबित किया जा सकता है, लेकिन एक कौल के जिमन में किसी फेल को इक्तिजान साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फेल एक हिस्सी चीज है जो आंखों से नजर आती है, और वो तो यहां मौजूद नहीं, यानी वो कब्जा हिस्सी तो यहां मौजूद नहीं है। लिहाजा इस आतकतु के जिमन में कब्जे को साबित नहीं माना जा सकता, और जब कब्जा साबित नहीं माना जा सकता तो आमिर मालिक ना बना, वो औरत इसकी मालिक ना बनी, तो ये गुलाम आका की तरफ से ही आजाद हुआ, लिहाजा ये निकाह फासिद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वला इस बात इक्तिजान, और ना ही कब्जे को इक्तिजान साबित किया जा सकता है, लिअन्नहु फ़िअलुन हिस्सीयुन, इसलिए क्योंकि कब्जा फेल हिस्सी है, बिखिलाफ अलबै बखिलाफ बै के, लिअन्नहु तसर्रुफ़ुन शरईयुन, वो एक तसर्रुफ़े शरई है, यानी उसका वो तसर्रुफ़े शरई कौली है, उसका ताल्लुक कौल से है। वफी तिलकल मसअलतिल फकीरु यनूबु अनिल आमिर फिल कब्ज़ी, अब ये जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कियास का। उन्होंने इस मसले को कियास किया था, वो जो कफारा जिहार के अंदर एक शख्स दूसरे को कहता है कि मेरी तरफ से फकीरों को खाना खिला दो, तो वहां पर वो बिल इतफाक आमिर की तरफ से होता है। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं यहां पर भी एताक आमिर की तरफ से होगा। तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप उस पर कयास नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है। वहां पर जो फकीर था, मोहताज था, जिसको ताम दिया गया, जिसको वो गल्ला वगैरह दिया गया, वो उस पर जब कब्जा करता है तो अव्वलन उसने आमिर की तरफ से कब्जा किया तो कब्जा पाया गया, और फिर फकीर ने अपने लिए कब्जा किया। जैसे जकात है, आपने जकात में पढ़ा है भाई कि जकात हक शरीयत भी है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। जकात का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। तो यह हक शरीयत भी है, और नीज ये जकात का पैसा मिलता किसको है? गरीबों को मिलता है, तो यह हकुल आबद भी है भाई, उनकी मदद हो जाती है। तो जकात हक शरीयत भी है और हकुल आबद भी है, बंदे का हक भी है। तो मालूम हुआ यह हक शरीयत है, यानी अल्लाह का हक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो जब भी हम किसी फकीर को जकात देते हैं, याद रखो फकीर जब उसको लेता है, उस पर कब्जा करता है, तो अव्वलन वो अल्लाह का नाइब होकर अल्लाह की तरफ से कब्जा करता है, क्योंकि यह हक शरा भी है, अल्लाह को भी हमने यह अदा करना है। तो वही जो फकीर का कब्जा है, इसको नाइब करार दिया है फुकहा ने, यह कब्जा कर रहा है किसका नाइब होकर, किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह का हक है। तो फकीर ने उस पर अल्लाह का नाइब होकर कब्जा किया, तो देखो अल्लाह का हक अदा हो गया, और फिर उसके बाद उस अपने लिए कब्जा हो गया, उसका अपने लिए कब्जा कर लिया, तो उसका अपना हक भी अदा हो गया। तो फकीर जैसे जकात के अंदर अव्वलन अल्लाह का नाइब होकर कब्जा करता है, फिर अपने लिए कब्जा करता है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी इसी तरह, जब ये खाना खिलाने वाला ये मिस्कीनों को खाना देगा, तो अव्वलन जो फकीर कब्जा करेगा वो किसकी तरफ से हुआ, आमिर, जिसने हुक्म दिया था। जैसे जकात के मसले में जकात का हुक्म किसने दिया था, अल्लाह ने, तो फकीर ने जो कब्जा किया वो किसकी तरफ से हुआ, आमिर की तरफ से हुआ। यहां पर भी जो फकीर खाने पर कब्जा करेगा, अव्वलन ये कब्जा किसकी तरफ से होगा, आमिर की तरफ से होगा। आमिर ने भी हिबा का कहा था और फकीर ने उसकी तरफ से नाइब होकर कब्जा कर लिया, तो हिबा कब्जे के साथ पाया गया या बगैर कब्जे के, कब्जे के साथ। भाई देखो ना, ये जो फकीर ने कब्जा किया है ये किसकी तरफ से किया, अव्वलन आमिर की तरफ से, तो आमिर की तरफ से कब्जा पाया गया, फकीर ने उसका नाइब बनकर कब्जा कर लिया, और कब्जे से हिबा क्या हो जाता है, ताम हो जाता है, लिहाजा आमिर उसका मालिक बना, और फिर उसके बाद फकीर ने अपने लिए कब्जा कर लिया। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को जवाब दे रहे हैं तरफेन, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस औरत जिसने आतिकहु अन्नी कहा था, इसके मसले को उन्होंने कियास किया था ताम के मसले पर, कि जैसे ताम के मसले में कब्जे का कोई एतबार नहीं, कब्जा साकित हो जाता है, यहां इस औरत के मसले के अंदर भी कब्जा साकित हो जाएगा और यह गुलाम औरत की तरफ से आजाद होगा, तो निकाह फासिद हो जाएगा। तो जवाब दिया कि नहीं, वहां पर जो हिबा हुआ था वहां बाकायदा कब्जा पाया गया था, कब्जा साकित नहीं हुआ था, कब्जे का तो हमने बता दिया, कब्जा साकित हो ही नहीं सकता। हदीस में आ गया उसका जिक्र भाई, कि हदीस में आ गया ला तसिहुल हिबा तो इल्ला मकबूजतन, कि कब्जे के बगैर हिबा सही नहीं हो सकता। तो यहां पर जो फकीर कब्जा कर रहा है, यह अव्वलन किसकी तरफ से कब्जा कर रहा है, आमिर, जिसने वो खाना खिलाने का कहा था, तो आमिर की तरफ से कब्जा आ गया, हिबा ताम हो गया, फिर उसके बाद फकीर ने अपने लिए कब्जा कर लिया, तो लिहाजा ये आमिर की तरफ से फकीर को पहुंच गया भाई। तो कहते हैं वफी तिलकल मसअलती, और उस मसले के अंदर वो जो इताम ताम वाला मसला था, अल फकीर यनूब अनिल आमिरी, फकीर जो है नाइब हो जाता है अनिल आमिरी, हुक्म देने वाले की तरफ से, फिल कब्जी कब्जे के अंदर, अम्मल अब्दु फला यकाउ फी यदिही शैउन लियनूब अन्हु, बाकी गुलाम तो उसके कब्जे में तो कोई चीज नहीं आती ताकि वो नाइब बन जाए उसमें आमिर की तरफ से। भाई देखो, जब आप किसी गुलाम को आजाद करते हैं, जब आप आजाद कर रहे हैं, तो आप किसी को इस गुलाम का मालिक नहीं बना रहे। जब आप एक गुलाम को आजाद कर रहे हैं, तो आप किसी को इस गुलाम का मालिक नहीं बना रहे, बल्कि आप अपनी मिल्कियत को जाया कर रहे हैं। और इसको याद रखो, यह गुलाम का जो आजाद करना है, इसको इहलाक कहते हैं। क्या कहते हैं? इहलाक। आप अपना माल हलाक कर रहे हैं भाई। ये इसी तरह है जैसे आप अपनी गाड़ी को आग लगा दें, जला दें, खत्म कर दिया, आपने इहलाक कर दिया, तलफ कर दिया अपनी चीज को। तो गुलाम को आजाद करना क्या है? यह इतलाफ है, दुनियावी एतबार से इतलाफ है। आप अपना माल जाया कर रहे हैं, किसी दूसरे को तो मालिक नहीं बना रहे इस गुलाम का। तवज्जो है। तो इताक क्या है? इतलाफ है, दुनियावी एतबार से इतलाफ है, अगरचे उखरवी एतबार से अजीम अजर सवाब का बाइस है भाई। तो दुनियावी एतबार से इताक क्या है? इतलाफ है, इसमें किसी को मालिक नहीं बनाया जाता। जबकि वहां पर वो जो ताम खिलाया जाता था, उसमें फकीर को मालिक बनाया जाता था। तो वहां पर फकीर को मालिक बनाते थे, फकीर उस पर कब्जा करता था। और यहां तो इताक है, इताक के अंदर तो इतलाफ है, इसमें तो किसी को मालिक बनाना या किसी का कब्जा नहीं। जब कब्जा नहीं है तो यहां पर ये आप नहीं कह सकते कि गुलाम जो है आमिर की तरफ से नाइब होकर कब्जा कर रहा है। वहां वो कब्जा किसने किया था? फकीर ने। किसका नाइब बना था? हुक्म देने वाले का, आमिर का नाइब बना था। लेकिन यहां गुलाम को जब आप आजाद कर रहे हैं तो गुलाम के कब्जे में कोई चीज आ रही है? गुलाम तो किसी चीज पर कब्जा नहीं कर रहा, तो यहां कब्जा है ही नहीं, यहां कब्जा है ही नहीं कि आप कहें यह आमिर की तरफ से नाइब होकर कब्जा कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो इताक में कब्जा होता ही नहीं, वहां पर इतलाफ होता है। लिहाजा यहां आप इस गुलाम के मसले को उस इताम तआम के मसले पर कियास नहीं कर सकते। ये तरफेन जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला को। तो देखिए फिर तर्जमा कहते हैं, वफी तिलकल मसअलती, और उस इताम तआम के मसले में, अल फकीर यनूबु अनिल आमिरी फिल कब्जी, के फकीर जो है वो हुक्म देने वाले की तरफ से नाइब बन जाता है कब्जे में। तो हिबा बगैर कब्जे के ना रहा, हिबा कब्जे के साथ हो गया। अम्मल अब्दु, बाकी ये गुलाम जो है, फला यकउ फी यदिही शय, उन इसके कब्जे में तो कोई चीज नहीं आई। लियनूबा अनहु, ताकि यह उस आमिर की तरफ से नाइब हो सके। बात समझ में आ गए? तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो आप इस गुलाम के मसले को इताम तआम पर कियास नहीं कर सकते। आगे देखिए भाई, बाबू निकाह ही अहले शिर्क, ये बाब है अहले शिर्क के निकाह के बारे में। भाई अहले शिर्क से यहां मुतलकन गैर मुस्लिम मुराद हैं, यानी जिम्मियों के निकाह के मसाइल जिक्र कर रहे हैं यहां साहिब हिदाया। तो कहते हैं, वह इदा तज़व्वजल काफिरु बिगैरी शुहूदिन औ फी इद्दती काफिरिन वज़ालिका फी दीनिहिम जाइज़ुन सुम्मा अस्लमा उक़िर्रा अलैह। सूरत मसला ये कि दारुल इस्लाम के अंदर एक काफिर ने, एक जिम्मी ने, एक जिम्मिया से निकाह कर लिया बगैर गवाहों के, और फिर बाद में ये दोनों मुसलमान हो गए। तो ये जो मियां बीवी हैं जिन्होंने बगैर गवाहों के निकाह किया था, इस्लाम लाने के बाद क्या इनके इसी निकाह को बरकरार रखा जाएगा, या ये हुक्म लगाया जाएगा कि ये निकाह तो हुआ ही नहीं था बगैर गवाहों के, तुम्हें दोबारा नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब इन्होंने निकाह किया था उस वक्त तो ये गैर मुस्लिम थे, और इनके नजदीक यानी इनके दीन के अंदर ये जायज था, ये जरूरी है इनके दीन में ये जायज हो, तो फिर इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा इस्लाम लाने के बाद भी। बात समझ में आ गई? दूसरी सूरत, एक जिम्मी ने जिम्मिया से निकाह कर लिया इद्दत के दौरान, उस जिम्मिया को किसी काफिर ने, किसी जिम्मी ने तलाक दी थी, इद्दत के अंदर ही इस जिम्मी ने उस औरत के साथ निकाह कर लिया। अब इद्दत के अंदर तो निकाह हमारे नजदीक नहीं हो सकता, फिर बाद में ये दोनों मुसलमान हुए, तो क्या इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा या इनको नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा। देखिए भाई कहते हैं, वह इजा तज़व्वजल काफिरु बिगैरी शुहूदिन, और जब किसी काफिर ने निकाह कर लिया बगैर गवाहों के, औ फी इद्दति काफिरिन, या किसी दूसरे काफिर की इद्दत के अंदर, वज़ालिका फी दीनिहिम जाइज़ुन, इस हाल में कि ये उनके दीन में जायज है, ये जरूरी कैद है क्योंकि उन्होंने अपने एतिकाद के मुताबिक सही निकाह किया है। तो कहते हैं, सुम्मा असलमा, फिर ये दोनों मुसलमान हो गए, उकिर्रा अलैही, तो इन दोनों को इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा। वहादा इंद अबी हनीफा रहमहुल्ला, ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं, अन निकाह फासिदुन फिल वजहैन, कि ये निकाह दोनों सूरतों में फासिद है, चाहे बगैर गवाहों के निकाह किया हो फिर भी फासिद, या इद्दत के अंदर निकाह किया हो फिर भी फासिद है। इल्ला अन्नहु ला युतअर्रजु लहुम क़ब्ल अल-इस्लामी वल मुराफ़अति इलल हुक्काम। तअर्रुज का माना याद रखो, तअर्रुज का माना है किसी चीज के पीछे पड़ना, किसी चीज में दखल देना। याद रखो, ये जो जिम्मी है इनके साथ हमने अक़्द-ए-ज़िम्मा किया हुआ है, लिहाजा इनके दीनी मामलात में
और वो मामला जिनमें वो हमारे मुखालिफ अकीदा रखते हैं उसके अंदर हम उनके साथ तारुज नहीं करेंगे, यानी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यूं कहें हम दखल नहीं देंगे, क्योंकि हमने अक़्दे जिम्मा लिया हुआ है कि हम तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करेंगे और तुम्हें अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत है भाई। लेकिन अगर दोनों मुसलमान हो जाएं या ये मुराफा करें भाई, मुराफा इलल हुकाम, मुराफा भी समझ लो, मुराफा इसको कहते हैं कि वो हुकाम के पास यानी काजी के पास आ गए, एक मसला जिक्र करते हैं कि हमें इसमें इस्लामी हुक्म बता दें, काजी के पास कोई मुकदमा लेकर वो नहीं आए, सिर्फ एक मामले के अंदर इस्लामी हुक्म मालूम करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम भी इस पर अमल करना चाहते हैं, हमें इस मामले में इस्लामी हुक्म का पता नहीं, हमें इस्लामी हुक्म बताया जाए ताकि हम भी क्या कर लें उस पर अमल कर लें। तो इमाम जुफर की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि अगर बगैर गवाहों के निकाह किया है या इद्दत के अंदर निकाह किया है तो हम उनके साथ तआरुज नहीं करेंगे, हम उनके मामलात में दखल नहीं देंगे, उनके निकाह को इसी तरह चलने देंगे। लेकिन अगर वो मुसलमान हो गए या वो काजी के पास आए और मुराफा किया, हुक्म मालूम किया, तो फिर इस सूरत के अंदर अब हम दखल देंगे जी। क्योंकि अगर मुसलमान हो गए हैं तो अब शरीयत के अहकाम के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, और अगर मुराफा किया है, वो खुद आकर कह रहे हैं कि हमें इस्लामी हुक्म बताया जाए, तो अब हम उनके मामले में दखल देंगे, अब उनमें जुदाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे? अभी तक तो हम दखल नहीं दे रहे थे कि भाई मर्जी आप अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन जब वो खुद आ गए मसला पूछने के लिए काजी के पास तो काजी उनमें जुदाई करवा देगा। तो मुराफा इलल हुकाम किसे कहते हैं कि हुकाम के पास यानी काजी वगैरह के पास आकर किसी मामले में इस्लामी हुक्म का पता करना कि हम भी उस पर अमल करना चाहते हैं। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला, इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं अन निकाह फासिदुन फिल वजह, यानी कि निकाह दोनों सूरतों में फासिद है, यानी चाहे बगैर गवाहों के हो चाहे इद्दत के अंदर हो, इल्ला अन्नहु ला युतअर्रजु लहुम क़ब्ल अल इस्लामी वल मुराफाति इलल हुक्कामी, मगर यह कि उनके साथ तअर्रुज नहीं किया जाएगा, यानी उनके मामले में दखल नहीं दिया जाएगा इस्लाम लाने से पहले और हुक्काम की तरफ मुराफा करने से पहले। وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الوجه الاول كما قال ابو حنيفه رحمه الله وفي الوجه الثاني كما قال زفر رحمه الله। साहिबैन जो हैं, साहिबैन पहले मसले के अंदर इमाम साहब के साथ हैं और दूसरे मसले के अंदर इमाम जुफर के साथ हैं। इमाम साहब तो फरमाते हैं दोनों सूरतों में चाहे वो इस्लाम ले आए या मुराफा करें, दोनों सूरतों में उनको उसी हुक्म पर बरकरार रखा जाएगा, जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं दोनों सूरतों के अंदर उनमें जुदाई करवा दी जाएगी, जबकि साहिबैन फरमाते हैं पहले मसले के अंदर कि अगर बगैर गवाहों के निकाह किया है तो इस सूरत के अंदर इस निकाह को इसी तरह बरकरार रखा जाएगा। ये दोनों इस्लाम ले आते हैं या मुराफा करते हैं तो इस हुक्म को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन दूसरे मसले के अंदर इन दोनों में जुदाई करवाई जाएगी। साहिबैन दरअसल फर्क करते हैं, साहिबैन फरमाते हैं एक है इत्तेफाकी मसला और एक है इख्तिलाफी मसला। इत्तेफाकी मसले के अंदर उनके लिए वही हुक्म होगा जो शरीयत का हुक्म है, और इख्तिलाफी मसला उन पर लाजिम नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे अपने फुकहा का जब इख्तिलाफ है तो हम वो कैसे दूसरों पर लाजिम कर सकते हैं। तवज्जो है, लेकिन इत्तेफाकी मसला उन पर लागू किया जाएगा। और निकाह बगैर गवाहों के, ये तो इख्तिलाफी मसला है, ये तो इख्तिलाफी मसला है, हमारे अहनाफ के यहां गवाहों का होना शर्त है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तो फरमाते ऐलान करना पड़ेगा, गवाहों की शर्त वो नहीं लगाते। तवज्जो है, तो बाज़ फुकहा जो हैं वो गवाहों की शर्त लगाते हैं और बाज़ फुकहा गवाहों की शर्त नहीं लगाते, तो ये इख्तिलाफी मसला हुआ, लिहाजा बगैर गवाहों के जो निकाह है उसमें उनको उसी पर बरकरार रखा जाएगा, चाहे वो इस्लाम ले आए चाहे वो मुराफा करें, सिर्फ मसला पूछने आए, काजी उनमें जुदाई नहीं करवाएगा। लेकिन इद्दत के अंदर निकाह, ये तो इत्तेफाकी मसला है, तमाम फुकहा के नजदीक इद्दत के अंदर औरत आगे निकाह नहीं कर सकती, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलिल मुतल्लकाती यतरब्बस नबी अनफुसिहिन्ना सलासत कुरू भाई, तो बिल इत्तेफाक औरत इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकती। तो यह इत्तेफाकी मसला उन पर भी लाजिम होगा, तो यह इत्तेफाकी मसला उन पर भी लाजिम था, यह इत्तेफाकी मसला उन पर भी लाजिम था, वो भी इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक किया और हमने दखल नहीं दिया। लेकिन अब तो इस्लाम ले आए हैं या मुराफा कर लिया है, तो अब इस्लामी हुक्म नाफिज होगा, वो निकाह कल अदम करार दिया जाएगा और फिर नए सिरे से इनको आपस में निकाह करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इमाम जुफर क्या फरमाते हैं, दोनों मसलों में काजी उनमें जुदाई करवाएगा, और इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं दोनों मसलों में उनको निकाह पर बरकरार रखा जाएगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं इत्तेफाकी मसले के अंदर उनमें जुदाई करवाएंगी, यानी इद्दत के अंदर अगर निकाह किया है, और इख्तिलाफी मसला जो गवाहों वाला है उसमें उसी निकाह पर उनको बरकरार रखा जाएगा। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह फिल वजह अल्अव्वल कमा قال अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, और साहिबैन फरमाते हैं पहली सूरत के अंदर यानी बगैर गवाहों के जो निकाह है उसमें वो इसी तरह फरमाते हैं कमा قال अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, जैसे इमाम साहब ने फरमाया व फिल वजह सानी, और दूसरी सूरत के अंदर जिसमें इद्दत के अंदर निकाह किया था कमा قال जुफर रहिमहुल्लाह, वो इसी तरह फरमाते हैं जैसे इमाम जुफर रहिमहुल्लाह ने फरमाया। लहू इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल खिताबात आम्मतुन अला मा मर्रा मिन कब्लु फतल्ज़मुहुम, भाई ये बात पहले भी गुजर चुकी है, यह मसला जिक्र हुआ था कि अगर जिम्मी आपस में निकाह करते हैं और महर कुछ भी मुकर्रर नहीं करते या मुर्दार को महर मुकर्रर करते हैं, तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि वहां पर महर मिसल आ जाएगा खुद ब खुद, इसलिए क्योंकि अहकाम शरीयत आम है भाई, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं, अगरचे ये इस्लाम नहीं लाए लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं, तो ये अहकाम सब के लिए हैं, लिहाजा इनको भी उस पर अमल करना पड़ेगा। तवज्जो है, लिहाजा बगैर गवाहों के निकाह करना इनके लिए भी जायज नहीं, और इद्दत के अंदर निकाह करना इनके लिए भी जायज नहीं। हां, अभी तक ये इस्लाम नहीं लाए थे या इन्होंने मुराफा नहीं किया था, अगर मसला नहीं पूछा था तो हमने भी दखल नहीं दिया, हमने भी दखल नहीं दिया, क्योंकि हमने इनके साथ अकदे जिम्मा किया हुआ है कि हम आपकी दीनी बातों में और मामलात में दखल नहीं देंगे। इसका यह मतलब नहीं कि उनके वो मामलात जायज हो गए थे, सिर्फ हमने दखल नहीं दिया था, लेकिन अब तो वो इस्लाम ले आए हैं या उन्होंने मुराफा कर लिया है, तो अब हम दखल देंगे और उनमें जुदाई करवाएंगे भाई, फिर नए सिरे से उनको निकाह करना पड़ेगा। लहू इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल खिताबाती आम्मतुन, अन्नल खिताबाती आम्मतुन, अल खिताबाती, मैंने इस पर जर पड़ा, क्या वजह है, शाबाश, ये मंसूब है जमा मुअन्नस सालिम, इसका नसब आता ही किस शक्ल में है, कसरा की सूरत में, तो ये मंसूब ही है, मजरूर नहीं है भाई, अन्ना का इसम है भाई। लहू इमाम जुफर की दलील यह है कि अन्नल खिताबात आम्मत, उनके खिताबात आम हैं, खिताब भाई, खिताब कहते हैं वो कलाम जो दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर किया जाए, ये जो मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं आपकी तरफ मुतवज्जे होकर, ये सारा खिताब है, तो दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर जो कलाम किया जाए उसे क्या कहते हैं, खिताब, मुराद इस्लामी अहकाम है, मुराद क्या है, इस्लामी अहकाम, उसमें भी तो शरीयत हमसे खिताब करती है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं नमाज कायम करो, जकात अदा करो, हज करो, तो ये जो सारे अहकाम हैं ये सब खिताब हैं। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो शरीयत के खिताब हैं, यानी शरीयत जो हुक्म दे रही है ये आम है, सबको शामिल है, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर, सबके लिए हैं ये अहकाम, क्योंकि ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हैं। लहू इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्नल खिताबात आम्मत, उनके शरीयत के खिताब जो हैं वो आम हैं, अला मा मर्रा मिन कब्लु, बवजह उसके जो माकबल में गुजर गया कि ये सब हुजूर की उम्मत हैं, फतल्ज़मुहुम, तो ये खिताब इन काफिरों पर भी लाजिम होंगे, व इन्नमा ला युतअर्रज़ु लहुम लिज़िम्मतिहिम, और हम इनके साथ तआर्रुज़ नहीं करते यानी हम इनमें दखल नहीं देते, लिज़िम्मतिहिम, इनके जिम्मा की वजह से, क्योंकि हमने इनसे अहदे जिम्मा किया हुआ है। तो कहते हैं व इन्नमा ला युतअर्रज़ु लहुम लिज़िम्मतिहिम,
और इनके साथ तआरुज नहीं किया जाएगा इनके जिम्मी होने की वजह से। एराजन ला तकरीरन, ये बतौर एराज के होगा न के बतौर तकरीर के। एराज का माना होता है एक चीज से मुंह मोड़ लेना, और तकरीर का माना होता है एक चीज को साबित करना। तो याद रखो, जब आप किसी चीज में दखल नहीं देते, वहां दो वजहें हो सकती हैं। या तो मसलन एक शख्स एक काम कर रहा है, आप कोई दखल नहीं देते क्योंकि आपके ख्याल में वो ठीक काम कर रहा है, तो आपका दखल ना देना ये तकरीरन है, इस बातन है कि आप उसके काम का इस बात कर रहे हैं, तवज्जो है। और बाज औकात आप किसी काम में दखल नहीं देते, एराज करते हुए रुख मोड़ लेते हैं। अब एक शख्स एक गलत काम कर रहा है लेकिन आप उस काम में दखल नहीं देते, आपका मकसद यह नहीं है कि यह ठीक काम कर रहा है, सबको नजर आ रहा है यह गलत काम कर रहा है, लेकिन आप बस एराज कर लेते हैं, उसके मामले में दखल नहीं देते कि मैं पहले भी इसको बहुत दफा समझा चुका हूं, अब मुझे इसके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो मालूम हुआ, दखल ना देना यह एराज के तौर पर भी हो सकता है और तकरीर के तौर पर भी हो सकता है। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, कि इमाम जुफर क्या फरमाते हैं, ये जिम्मी के इनके लिए भी बगैर गवाहों के निकाह जायज नहीं, इनके लिए भी इद्दत के अंदर निकाह जायज नहीं, लेकिन हम इनके मामलात में दखल नहीं देंगे। और ये दखल क्यों नहीं दे रहे हम, एराज करते हुए मुंह मोड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि हम बतौर इस बात के दखल नहीं दे रहे कि हम क्या ये ठीक है, बल्कि हमारा दखल ना देना उनके जिम्मी होने की वजह से है, हम इनसे एराज करते हुए दखल नहीं देते, इनके बातिल कामों पर इस बात करते हुए दखल ना दें, ऐसा नहीं है भाई। तो कहते हैं वह इन्नमा ला युतअर्रजु लहुम लिज़िम्मतिहिम, और तअर्रुज इनसे नहीं किया जाएगा लिज़िम्मतिहिम इनके जिम्मी होने की वजह से। एराज़न बतौर एराज के, ला तकरीरन न के बतौर इस बात के। व इदा तराफ़ऊ औ अस्लमू वल हुर्मतु क़ाइमतुन वजबत तफरीक। इमाम जुफर फरमाते हैं व इदा तराफ़ऊ, और जब इन्होंने खुद मुराफा कर लिया, हुकाम के पास मसला पूछने आ गए, औ अस्लमू या ये खुद मुसलमान हो गए, वल हुर्मतु क़ाइमतुन इस हाल में कि निकाह की हुर्मत अभी भी मौजूद है। निकाह तो जो इन्होंने किया था वो तो हराम किया था भाई, शरीयत ने तो उसकी इजाजत नहीं दी थी, तो वो निकाह की हुर्मत अभी भी मौजूद है क्योंकि शरीयत का हुक्म इसी तरह है। तो वजबत तफरीकु, तो वाजिब हो गई जुदाई करवाना, इनमें अब क्या करवाई जाएगी, जुदाई करवाई जाएगी क्योंकि ये मुसलमान हो गए हैं, ये इन्होंने खुद आकर मसला पूछा है, अब काजी दखल देगा, पहले तो दखल नहीं दिया था लेकिन अब दखल देगा और अब इनमें जुदाई करवाई जाएगी। वलहुमा, और साहिबैन की दलील ये है, साहिबैन की दलील मैंने क्या बतलाई, साहिबैन फरमाते हैं इत्तेफाकी मसला जो है वो इन पर भी लाजिम है और इख्तिलाफी मसला इन पर लाजिम नहीं। ये बात पीछे भी गुजरी थी, वही जहां एक जिम्मी ने जिम्मिया से निकाह किया मुर्दार पर या बगैर महर के, तो साहिबैन क्या फरमाते थे, साहिबैन फरमाते थे कि जो जिम्मी हैं इन्होंने अहदे जिम्मक, इन्होंने हमारे साथ मुआहिदा किया है कि ये हमारे कवानीन की पाबंदी करेंगे, तो इन्होंने अपने ऊपर इल्तिजाम भी किया है, अपने ऊपर इन कवानीन को तस्लीम किया है जिनका ताल्लुक मामलात से है। भाई देखो ना, जब जिम्मी दारुल इस्लाम में रहते हैं तो मुसलमानों को भी उनके साथ मामलात करने की हाजत पेश आएगी। अब दो सूरतें हैं, या तो मुसलमानों को इनके ताबिया कर दिया जाए मामलात में, या इनको मुसलमानों के ताबिया कर दिया जाए। मुसलमानों को तो जिम्मियों के ताबिया नहीं किया जा सकता, मुसलमानों को तो जिम्मियों के ताबिया नहीं किया जा सकता क्योंकि दारुल इस्लाम है, तो फिर जाहिर सी बात है जिम्मियों को मुसलमानों के ताबिया करार दिया जाएगा और उनको मामलात मुसलमानों के मुताबिक करना पड़ेंगे क्योंकि हमें भी उनके साथ मामला की जरूरत पेश आएगी, तो उनको पाबंद किया जाएगा कि ये मामला सिर्फ तुम्हें आपस में नहीं करने बल्कि मुसलमानों के साथ भी तुम्हें जरूरत पेश आएगी, लिहाजा तुम्हें इस्लामी कवानीन के मुताबिक ये मामला करने पड़ेंगे। तो उन्होंने जब हमारे साथ मुआहिदा कर लिया है, जिम्मी बनकर रहेंगे, तो उन्होंने खुद अपने ऊपर हमारे कवानीन को लाजिम कर लिया। और नीज हमारे पास हुकूमत भी मौजूद है, इस्लामी हुकूमत है, हमारे पास विलायत इल्जाम भी है, हम जबरन भी उन पर कवानीन क्या कर सकते हैं,
लाजिम कर सकते हैं। तो यहां पर जब इस्लामी सल्तनत में रहते हैं तो यहां इन्होंने इल्तिजाम भी किया हुआ है और नीज हमें विलायत इल्जाम भी है क्योंकि इस्लामी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, तो लिहाजा अब इन पर यह कवानीन लाजिम होंगे। तो वही बात जिक्र कर रहे हैं यहां पर वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है कि अन्नहुर्मतन निकाहिल मुअतद्दति मुजमाउन अलैहा, कि मुअतद्दा के निकाह का हराम होना मुजमाउन अलैहा, यह तो मुजमा अलै मसला है, यानी जिस पर तमाम उम्मत का इजमा है भाई, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलिल मुतल्लकात यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, तो लिहाजा ये तो इजमाई मसला है, यानी मुजमा अलै मसला है जिस पर सारी उम्मत का इजमा है, तो लिहाजा इसकी तो इनको भी इजाजत नहीं होगी भाई, अलबत्ता इख्तिलाफी मसले में इनके लिए गुंजाइश होगी भाई। तो कहते हैं वलहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्न हुर्मत निकाहिल मुअतद्दति मुजमाउन अलैहा, कि मुअतद्दा के निकाह का हराम होना यह तो मुजमा अलै मसला है, फकानू मुल्तजिमीन लहा, तो ये इसका इल्तिजाम करने वाले हैं, यानी इन्होंने हमारे साथ अहद जिम्मा करके खुद ही इन कवानीन का अपने ऊपर इल्तिजाम किया हुआ है। तो कहते हैं फकानु मुल्तजिमीन लहा, तो ये इसको अपने ऊपर इल्तिजाम करने वाले हैं। व हुर्मतन निकाही बिगैरी शुहूदिन मुख्तलफुन फीही, और बगैर गवाहों के जो निकाह की हुर्मत है मुख्तलफुन फीह, वो तो मुख्तलफ ही है, उसमें तो मुश्तहिदीन का आपस में इख्तिलाफ है भाई, फुकहा का आपस में इख्तिलाफ है। वलम यल्तजिमु अहकामना, और इन्होंने इल्तिजाम नहीं किया हमारे अहकाम का, बिजमी इख्तिलाफात तमाम इख्तिलाफात के साथ, यानी वो इख्तिलाफात के साथ जो अहकाम है उनका अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया, उसमें तो फुकहा खुद आपस में इख्तिलाफ करते हैं, तो वो इन पर लाजिम नहीं, इसका इन्होंने अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया, ये माना है। वलम यल्तजिमु अहकामना, और इन्होंने हमारे अहकाम का इल्तिजाम नहीं किया, बिजमी इख्तिलाफाती तमाम इख्तिलाफात के साथ। वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, अब इमाम साहिब की दलील आ गई। वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्नल हुर्मता ला युमकिनु इस बातुहा हक्कन लिश्शरई, अन्नल हुर्मता, ये जो हुर्मत है, ये जो इन्होंने पीछे बताया बगैर गवाहों के निकाह करना और इसी तरह इद्दत के अंदर निकाह करना, देखो ये हराम है, बगैर गवाहों के निकाह करना शरीयत में हराम, इसी तरह इद्दत के अंदर निकाह करना ये शरीयत में हराम, तो यहां ये जो अल हुर्मत आया इससे मुराद ये जो माकबल में निकाह जिक्र हुए इनकी हुर्मत मुराद है। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन अल हुर्मत, कि ये वाले जो निकाह हैं इनकी जो हुर्मत है, इनका जो हराम होना है, ला युमकिनु इस बातुहा हक्कन लिश्शरई, मुमकिन नहीं है कि इस हुर्मत को साबित किया जाए बतौर शरीयत के हक के, यानी जिम्मियों के हक में इस निकाह की हुर्मत को साबित किया जाए कि जिम्मियों के लिए भी यह निकाह हराम है, नहीं, जिम्मियों के हक में इन निकाहों की हुर्मत को हम साबित नहीं कर सकते बतौर हक शरा के भी, क्योंकि यह शरीयत के मुखातब नहीं है भाई। आसान लफ्जों में यूं कहो, शरई अहकाम को इनके ऊपर लाजिम नहीं किया जा सकता कि शरीयत का हक है तुम्हें भी करना पड़ेंगे, नहीं भाई, शरई अहकाम उन पर लाजिम नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। चुनांचे इसीलिए शरीयत के अंदर तो शराब और खिंजीर, इनका खाना पीना भी हराम और इनकी बेओशिरा भी हराम है, लेकिन ममलिकत इस्लामिया के अंदर रहने के बावजूद इनके लिए शराब और खिंजीर का खाना पीना भी जायज और उसकी बेओशिरा भी इनके लिए जायज है। मालूम हुआ कि ये शरीयत इस्लामिया के अहकाम इन पर लाजिम नहीं है भाई। वली अबी हनीफत रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल हुर्मत ला युमकिनु इस बातुहा हक्कन लिश्शरई, कि ये जो हुर्मत है इस मुमकिन नहीं है इसको साबित किया जाए हक्कन लिश्शरई बतौर हक शरा के, शरीयत के हक के तौर पर भी इस हुर्मत को उनके हक में साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि उन्होंने शरीयत इस्लामिया के कवानीन का अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया, ना उन्होंने इल्तिजाम किया है ना हमारे पास विलायत इल्जाम है, क्योंकि विलायत इल्जाम तो तलवार के जरिए होगी या बहस मुबाहसे के जरिए होगी, जैसे चंद सफे कबल यह मसला गुजरा था, तो ना हमारे पास विलायत इल्जाम है। विलायत इल्जाम क्यों नहीं? क्योंकि हमने खुद इनसे मुआहदा किया हुआ है, यह जिम्मी है भाई कि हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देंगे, तो लिहाजा हम इन पर जबर भी नहीं कर सकते और नीज इन्होंने खुद भी शरीयत के कवानीन का अपने ऊपर इल्तिजाम नहीं किया। तो यह जो निकाह हराम था, इस हुरमत को इनके हक में साबित नहीं किया जा सकता शरीयत के हक के तौर पर, बतौर हक शरीयत के उनके ऊपर यह जो इन्होंने निकाह किया है बगैर गवाहों के इद्दत के अंदर, इसकी हुरमत को उनके लिए साबित नहीं किया जा सकता भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफत रहमहुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल हुरमत ला यमकिनु इस बात हुआ कि ये जो निकाह की हुरमत है मुमकिन नहीं है इसको साबित किया जाए हक्कन लिशरई बतौर शरीयत के हक के, ले अन्नहुम ला युखातबून बि हुकूकिही इसलिए क्योंकि ये जो जिम्मी है ये हुकूक शरीयत के मुखातब नहीं है, अहकाम शरीयत इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी शराब और खिंजीर, शरीयत में शराब का पीना और खिंजीर का खाना मना है और इनकी ब्याओशिरा भी मना है, लेकिन ये जिम्मी शराब पीते हैं और खिंजीर खाते हैं और इनकी ब्याओशिरा भी करते हैं। तो कहते हैं लियन्नहुम ला युखातबूना बिहुकूकिही इसलिए क्योंकि ये जिम्मी जो है ये हुकूक शरा के मुखातब नहीं है, यानी शरिया अहकाम के मुखातब नहीं है। वला वजह इला इजाबिल इद्दत हक्कन लिज़ौज, दूसरी सूरत यह है कि ये जो इद्दत वाला मसला था, इद्दत वाला मसला था, इसमें इसमें तो हकुल आबद भी था। क्या था भाई? बगैर गवाहों के आप निकाह नहीं कर सकते, यह हक शरा है, लेकिन आप इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकते, यह हक शरा भी है, शरीयत ने भी मना किया है, और नीज ये हकुल आबद भी है, यह उस खावंद का हक है, यह उस खावंद का हक है कि उसकी इद्दत के अंदर बीवी निकाह न करे, क्योंकि हो सकता है बीवी खावंद से हामिला हो, तो नसब की हिफाजत के लिए ये खावंद का हक है औरत पर कि वो इस दौरान निकाह नहीं कर सकती। ये किसका हक है? खावंद का हक है कि कहीं औरत उससे हामिला न हो गई। तो लिहाजा बगैर गवाहों के निकाह यह भी हक शरा है, तो उसमें तो बतला दिया कि यह हुकूक शरा के मुखातब नहीं है, और इद्दत के अंदर तो हकुल आबद भी है, खावंद का हक है, तो उसमें खावंद का हक है। कहते हैं खावंद के हक के तौर पर भी इद्दत को इन पर साबित नहीं किया जा सकता, इद्दत में खावंद का हक है, लेकिन खावंद के हक के तौर पर भी जिम्मिया पर इद्दत को वाजिब नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं इसलिए क्योंकि खावंद का एतिकाद नहीं। एक जिम्मी ने इस औरत को तलाक दी थी और फिर इस औरत ने इद्दत के अंदर एक और जिम्मी से निकाह कर लिया जी। और ये उनके दीन में भी जायज है जी। ये उनके दीन में भी जायज है। मालूम हुआ जिस जिम्मी ने तलाक दी थी उसका ये अकीदा ही नहीं है कि मेरा हक है इस औरत पर कि इद्दत गुजारे। मालूम हुआ उस जिम्मी का यह एतिकाद नहीं। जब उसका यह एतिकाद ही नहीं है, वो इस इद्दत को अपना हक समझता ही नहीं है, तो बतौर हकुल आबद के भी यह इद्दत औरत पर वाजिब नहीं की जा सकती। हक शरा के तौर पर भी इद्दत वाजिब नहीं हो सकती क्योंकि शरई अहकाम उसकी तरह मुतवज्जे नहीं, और नीज खावन के हक के तौर पर भी जिम्मिया पर इद्दत को वाजिब करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि खावन का यह एतिकाद नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक तो इद्दत में भी निकाह जायज है। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वला वजह इला इजाबिल इद्दत हक्कन लिज़ौजी, और इसकी भी कोई सूरत नहीं है कि इद्दत को वाजिब कर दिया जाए खावंद के हक के तौर पर। लिअन्नहु ला यातकिदुहु इसलिए क्योंकि खावंद का तो यह एतिकाद ही नहीं है, वो तो इसको अपना हक समझता ही नहीं है। मुसलमान जब किसी औरत को तलाक देता है तो फिर इस सूरत में याद रखो मुसलमान को पता है औरत पर इद्दत वाजिब होगी या इद्दत के अंदर आगे निकाह नहीं कर सकती, तो मुसलमान तो इस इद्दत को अपना हक समझता है, लेकिन काफिर का तो यह एतिकाद ही नहीं, वो इसको अपना हक समझता ही नहीं। जब वो इसको अपना हक नहीं समझता तो आप इसके हक के तौर पर औरत पर कैसे वाजिब कर सकते हैं?
तो यह माना है लिया नहु लाया तकदहु, इसलिए क्योंकि वो खामन जो है वो तो इसका एतकाद ही नहीं रखता। बेखिलाफी मा इदा कान तख्त मुस्लिमीन, बखिलाफ इसके कि अगर वो जिम्मिया किसी मुसलमान के तख्त थी। लिअन्नहु यातकिदुहु, मुसलमान तो इस वजूब इद्दत का एतकाद रखता है, तो फिर इस सूरत के अंदर जुदाई करवाएगा काजी। इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि बगैर गवाहों के जिम्मियों ने निकाह कर लिया या इद्दत के अंदर जिम्मी ने निकाह कर लिया एक औरत से और फिर ये इस्लाम लिया या मुराफा किया, तो इनके निकाह को बरकरार रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये शरई अहकाम इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, ये शरई अहकाम के मुखातब नहीं है। जब ये उसके मुखातब नहीं है तो ये जो हुरमत है ये शरीयत के हक के तौर पर भी इन पर लाजिम नहीं की जा सकती कि तुम्हारे लिए तो ये निकाह हराम था, ये इनको नहीं कहा जा सकता शरीयत के हक के तौर पर। और नीज खावंद के हक के तौर पर औरत पर इद्दत को भी वाजिब करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि खावंद का तो एतिकाद ही नहीं है कि ये उसका हक है भाई। लेकिन अगर ये जिम्मिया मुसलमान के निकाह में थी, आप जानते हैं अहले किताब औरतों से मुसलमान के लिए निकाह जायज है, तो अगर ये जिम्मिया किसी मुसलमान के निकाह में थी और उस मुसलमान ने इसको तलाक दी है, तवज्जो है, और फिर उसने इद्दत के अंदर किसी और जिम्मे से निकाह कर लिया है, वैसे तो हम दखल नहीं देंगे, लेकिन अगर इन्होंने मुराफा किया या ये इस्लाम लाए दोनों, फिर जुदाई करवाई जाएगी। क्योंकि अब यहां अगरचे वो इद्दत हक शरा के तौर पर तो औरत पर वाजिब नहीं हो सकती थी, लेकिन खावंद तो मुसलमान था, खावंद का तो ये एतिकाद था कि इस औरत को क्या गुजारनी पड़ेगी, इद्दत गुजारना पड़ेगी भाई। तो लिहाजा फिर इस सूरत में औरत पर इद्दत को वाजिब करार दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। यह माना है बेखिलाफ इमा इदा काना तहत मुस्लिमीन, बखिलाफ इसके कि जब ये जिम्मियत किसी मुसलमान के तहत थी यानी मुसलमान की बीवी थी। लिअन्नहु यातकिदुहु, क्योंकि मुसलमान तो इस इद्दत का एतकाद रखता है कि ये इस पर वाजिब है। तो कहते हैं वइदा सहा निकाहु, तो जब ये निकाह सही हो गया, जब ये निकाह सही हो गया, कौन सी सूरत? वो जो मतन में आया था बगैर गवाहों के निकाह कर लिया है या काफिर की इद्दत के अंदर एक जिम्मिया ने निकाह कर लिया है, तो इमाम साहब के नजदीक इनका निकाह सही हुआ। और जब निकाह सही हुआ और अब ये दोनों मुसलमान हुए हैं, दोनों मुसलमान हुए हैं या इन दोनों ने मुराफा किया है, तो ये तो हालत बका है। एक है इब्तिदाई निकाह, एक है बकाए निकाह। जब अकद करने लगे वो था इब्तिदाए निकाह, निकाह की इब्तिदा हो रही थी और अकद तो गुजर गया। अब कौन सी सूरत है? बकाए निकाह है, निकाह अभी बाकी है इन दोनों के दरमियान। तो ये दोनों ने जब मुराफा किया और काजी के पास आए हैं या दोनों मुसलमान हो गए हैं, तो ये बकाए निकाह की हालत है या इब्तिदाए निकाह की हालत है? इब्तिदाए निकाह कब था? जब अकद किया था भाई, जब इजाब और कबूल कर रहे थे उस वक्त निकाह का आगाज हो रहा था, वो था इब्तिदाए निकाह। और उसके बाद अब सारा क्या है? बकाए निकाह है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जिस वक्त इन्होंने ये निकाह किया था तो उस वक्त उनके लिए ये अकद हराम नहीं था, हमने बता दिया ना, तो बतौर शरीयत के हक के ये निकाह उनके लिए हराम था क्योंकि शरीयत इस्लामी तो उनकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, और ना खावंद के हक के तौर पर उस इद्दत के अंदर निकाह हराम था। अब ये काजी के पास आए हैं, मुराफा किया है या दोनों मुसलमान हो गए हैं, तो ये बकाए निकाह की हालत है, इब्तिदाए निकाह की हालत नहीं। इब्तिदाए निकाह के अंदर गवाह ना हो तो निकाह नहीं हो सकता मुसलमानों में, लेकिन अब ये मुसलमान हुए हैं या इस्लामी हुक्म मालूम करने आए हैं, अब तो इब्तिदाए निकाह नहीं है, ये तो बकाए निकाह की हालत है। और बकाए निकाह के लिए गवाहों का होना शर्त नहीं है, बकाए निकाह के लिए गवाहों का होना शर्त नहीं। भाई देखो, मसलन एक मुसलमान औरत के साथ निकाह करता है, दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों ने निकाह कर लिया, तो देखो ये निकाह जो है बगैर गवाहों के नहीं हो सकता, इब्तिदाए निकाह में इन गवाहों का होना जरूरी है, लेकिन बाद में इन गवाहों की कोई अब जरूरत नहीं। अब बाद में अगर इन गवाहों का इंतकाल भी हो जाए, इस निकाह पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा।
मालूम हुआ इब्तिदाए निकाह में तो गवाहों का होना जरूरी है, बकाए निकाह के अंदर गवाहों का होना जरूरी नहीं। तो लिहाजा इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब फरमाते हैं कि इब्तिदाए निकाह में गवाह नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो शरीयत उनकी तरफ मुतवज्जह ही नहीं, उनका निकाह हो गया। अब जब ये दोनों मुसलमान हुए हैं या मुराफा किया है तो अब बकाए निकाह की हालत है, और बकाए निकाह के अंदर तो गवाहों का होना जरूरी नहीं, गवाहों का होना शर्त नहीं है, लिहाजा उसी निकाह को बरकरार रखेंगे, क्योंकि अब बकाए निकाह का मामला है, इब्तिदाए निकाह का मामला नहीं। ये अब जब दोनों मुसलमान हो रहे हैं या मुराफा कर रहे हैं तो ये कौन सा वक्त है? बकाए निकाह का वक्त है, और बकाए निकाह के लिए तो गवाहों की शर्त नहीं, लिहाजा उसी निकाह को बरकरार रखा जाएगा। दूसरी सूरत ले लें, इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब फरमाते हैं कि इद्दत के अंदर इन्होंने निकाह किया था, और उस वक्त निकाह को हम हराम नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि शरीयत उनकी तरह मुतवज्जे ही नहीं है, वो मुखातब ही नहीं है शरिया काम के, तो मालूम है इब्तिदाए निकाह उनके हक में ठीक हो गया, इब्तिदाए निकाह ठीक हो गया। अब दोनों मुसलमान हो गए हैं या इन्होंने मुराफा किया है, लेकिन ये बकाए निकाह की हालत में किया है। दोनों मुसलमान हो गए या मुराफा किया किस हालत में? बकाए निकाह की हालत में, और इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, लिहाजा यहां पर भी इनमें जुदाई नहीं करवाएंगे, यहां भी क्योंकि इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, यानी निकाह के साथ इद्दत भी आ सकती है, तवज्जो है। तो इस पर इश्काल होता है कि निकाह भी हो और इद्दत भी आ जाए, ये कैसे? इमाम साहब फरमा रहे हैं ना, इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, इद्दत बकाए निकाह के साथ जमा हो सकती है। तो सवाल पैदा होता है कि इद्दत तो निकाह टूटने के बाद आया करती है, तलाक देने के बाद इद्दत आती है, तो मालूम हुआ निकाह के साथ तो इद्दत नहीं आती, निकाह के बाद इद्दत आया करती है। लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि नहीं भाई, इद्दत भी निकाह के मुनाफी नहीं। किसकी दलील जिक्र हो रही है? इमाम साहब की। इमाम साहब फरमाते हैं इद्दत भी बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, निकाह भी हो और इद्दत भी औरत पर आ जाए, ऐसा हो सकता है। मसलन एक शख्स है वो गायब है भाई, एक औरत ने एक आदमी से निकाह किया था और वो शख्स गायब हो गया, अब कई साल गुजर गए उसका पता ही नहीं है, तो औरत ने ख्याल किया कि यकीनन वो मर गया होगा, उस औरत ने एक शख्स से निकाह कर लिया और क्या कहा, मेरा खावंद मर चुका है। उस शख्स ने इसके साथ सोहबत कर ली, लेकिन इत्तेफाक से चंद दिन के बाद वो पहला खावंद फिर वापस आ गया। तो याद रखो, ये जो बीवी है इसका दूसरा निकाह शुमार नहीं होगा, क्योंकि अभी वो पहले खावंद की मनकूहा है, तो ये दूसरा निकाह कल आदम हो जाएगा, लेकिन इस दूसरे खावंद ने सोहबत तो की है इसके साथ, तवज्जो है, सोहबत तो की है, तो इस सूरत में औरत पर इद्दत वाजिब होगी। वो पहला खावंद इस बीवी के साथ फौरन सोहबत नहीं कर सकता, बल्कि औरत को पूरी इद्दत गुजारना पड़ेगी, फिर पहला खावंद उसके साथ सोहबत कर सकता है। तवज्जो है, तो देखो निकाह भी मौजूद है और औरत इद्दत भी गुजार रही है, मालूम हुआ इद्दत बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, इब्तिदाए निकाह के तो मुनाफी है इद्दत, जब इद्दत में हो तो निकाह नहीं हो सकता, लेकिन बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है इद्दत भाई। तो कहते हैं वह इदा सहा निकाह हो, और जब इनका निकाह सही हो गया, ये जिम्मी और जिम्मिया का निकाह सही हो गया, क्योंकि शरीयत के ये मुखातब नहीं है, तो कहते हैं वह इदा सहा निकाह हो, और जब इनका ये निकाह सही हो गया, फहालतुल मुराफात वल इस्लामी हालतुल बकाई, तो ये जो मुराफात और इस्लाम लाने की हालत है, हालतुल बकाई, ये कौन सी हालत है? बकाए निकाह की हालत है। वह शहादत लैसत शर्तन फीहा, और इस बकाए निकाह की हालत में तो शहादत शर्त नहीं है, गवाह मर भी जाए निकाह बाकी रहता है। तो कहते हैं वह शहादत लैसत शर्तन फीहा, और बकाए निकाह की हालत में तो गवाही शर्त नहीं है। वह कदल इद्दत ला तुना फीहा, और इसी तरह इद्दत जो है वो भी बकाए निकाह की हालत के मुनाफी नहीं है, बकाए निकाह के साथ इद्दत आ सकती है।
कल मनकूहति इजाबुतिअत बिशुभतिन, जैसे वो औरत जो मनकूहा है जिसका निकाह हो चुका है, इजाबुतिअत बिशुभतिन जब उसे सोहबत कर ली जाए शुबे की वजह से।
भाई वही मसला जो मैंने अभी बयान किया, एक औरत का खावंद बड़े अरसे से गायब है और वो समझी वो मर चुका है और उसने आगे निकाह कर लिया और दूसरे शख्स ने फिर इसे सोहबत भी कर ली, उसका क्या ख्याल था कि इस औरत का खावंद मर चुका है भाई, तो उसने निकाह कर लिया और फिर इस औरत से सोहबत कर ली और बाद में फिर वो खावंद वापस आ गया, तो फिर ये औरत पहले ही खावंद की बीवी है और दूसरा निकाह कल आदम है, उसका कोई एतबार नहीं। जब दूसरे निकाह का कोई एतबार नहीं तो मालूम हुआ उस दूसरे खावंद ने जो सोहबत की है वो वती बिशुबा है, वो वती बिशुबा है, उसने तो इस शुबे में सोहबत की कि शायद मेरा निकाह हो चुका है, ये मेरी मनकूहा है, हालांकि हकीकत में तो ये निकाह हुआ ही नहीं, तो ये जो वती थी ये वती शुबा की वजह से हुई थी और इसकी वजह से अब इस औरत पर इद्दत आएगी। अब पहला खावंद इस औरत से सोहबत नहीं कर सकता जब तक यह औरत इद्दत न गुजार ले, तो ये जो मनकूहा है इसके साथ जो वती की गई यह क्या थी, वती बिशुबा थी भाई। तो कहते हैं कल मनकूहति इजावुतिअत बिशुभतिन, जैसे कि मनकूहा औरत इजावुतिअत जब उसे वती कर ली जाए बिशुभतिन शुबे की वजह से। बात समझ में आ गई। तो हासिले कलाम क्या कि जिम्मियों ने आपस में बगैर गवाहों के निकाह किया है या इद्दत के अंदर औरत ने निकाह किया है, तवज्जो है, तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम साहब फरमाते हैं अगर ये इस्लाम ले आए या मुराफा किया तो ये बकाए निकाह की हालत है, लिहाजा इनको इसी निकाह पर बरकरार रखा जाएगा, दोबारा नए सिरे से निकाह करने की हाजत नहीं है भाई। यहां पर बाज मुहशी हजरात ने बड़ी कीमती बात लिखी, कहते हैं ये जो इद्दत के मसले में इख्तिलाफ जिक्र हुआ इमाम साहेब का और साहिबैन का, ये इख्तिलाफ उस सूरत में है कि जब इद्दत अभी चल रही हो, एक जिम्मिया औरत ने जिम्मी के साथ निकाह किया है इद्दत के अंदर और अभी ये इद्दत पूरी नहीं हुई, इद्दत चल रही है, इसी दौरान दोनों मुसलमान हो गए या दोनों ने मुराफा कर लिया जी। तो कहते हैं उस सूरत में इख्तिलाफ है, उस सूरत में जब अभी इद्दत चल रही है उस वक्त साहिबैन फरमाते हैं इनमें मुराफा या इस्लाम की सूरत में काजी जुदाई करवाएगा, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं काजी जुदाई नहीं करेगा क्योंकि ये बकाए निकाह की हालत है भाई। तो ये इख्तिलाफ किस सूरत में, बाज उलमा फरमाते हैं कि ये इख्तिलाफ जब अभी इद्दत चल रही हो उस सूरत में इख्तिलाफ है, और अगर इद्दत गुजर चुकी है, एक औरत ने एक जिम्मी से निकाह किया था और एक साल पहले निकाह किया था इद्दत के अंदर, अब तो इद्दत गुजर चुकी है, अब आकर वो मुराफा करते हैं या इस्लाम लेकर आते हैं दोनों, तो इस सूरत में कहते हैं साहिबैन भी इमाम साहेब के साथ ही हैं कि वो इद्दत तो गुजर चुकी है, लिहाजा वो भी फरमाते हैं कि इस निकाह को इसी तरह बरकरार रखा जाएगा। बात समझ में आ गई। और कहते हैं चुनाचे इसीलिए साहिब हिदाया की इबारत में भी इसकी तरफ इशारा है, साहिब हिदाया ने किस तरह जिक्र किया, वकदल इद्दतु ला तुनाफीहा, कि इद्दत भी मुनाफी नहीं है बकाए निकाह की हालत के, इद्दत मुनाफी नहीं है बकाए निकाह की हालत में, तो इद्दत अभी मौजूद है और मुराफा कर लिया या इस्लाम ले आए तो ये इद्दत बकाए निकाह की हालत के मुनाफी नहीं है, ये इद्दत जो इस वक्त भी मौजूद है। बात समझ में आ गई, ये माना है, मसला भी समझ में आया कि नहीं, तो कहते हैं साहिबे हिदाया ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है अपनी इबारत के जरिए कि वो फरमाते हैं वकजल इद्दतु ला तुनाफीहा, इद्दत भी बकाए निकाह के मुनाफी नहीं है, मालूम हुआ इद्दत अभी मौजूद है फिर भी इसकी मुनाफात नहीं है, अगर इद्दत गुजर गई तो फिर तो इद्दत गुजर चुकी है तो अब मुनाफात, अब कहां से मुनाफात भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं साहिब हिदाया की जो इबारत है वकदल इद्दतु ला तुनाफीहा, इसमें इसी बात की तरफ इशारा है। चलिए बस करें, बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।